खुद भजन न कर सकता और दूसरे को उत्साहित करे तो वास्तव में तो भी उसे कृपा मिल सकती है, लेकिन कम से कम किसी को रोकना नहीं चाहिए भजन करने से। सभी माता पिताओं को यह सिद्धांत समझना चाहिए, और इसका आदर्श प्रकट कर रही है रामायण में लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा। आप सब जानते हो जब कैकेयी ने दो वर मांग लिए, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 साल के लिए राम को वन में जाना है और भरत को गादी देनी है। राम तुरंत वन में जाने के लिए तैयारी किए, तब लक्ष्मण ने कहा प्रभु मैं भी आपके साथ आना चाहता हूं, क्योंकि जहां मेरे राम वहां मैं। तो भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि आप यहां पर रहो, माता पिता का ख्याल रखो, लेकिन लक्ष्मण ने कहा नहीं, मुझे आपके साथ ही चलना है। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, आपको हमारे साथ चलना है तो अपनी माता से आदेश लेकर आओ, पहले अपनी माता को पूछकर आओ कि राम वन में जा रहे हैं 14 साल के लिए, तो क्या मैं जाऊं। तो यह सुनकर लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा के पास जाते हैं और माता सुमित्रा को कहते हैं कि बड़े भाई, रामचंद्र जी जा रहे हैं 14 साल के लिए वन में, तो मां मैं जाऊं। तब इस संसार की आदर्श माता चरितार्थ करके दिखा रही है कि किस प्रकार संसार में हमें मां बनना चाहिए। तब माता सुमित्रा कहती है, डांटती है, तू यहां पर क्यों आ गया, तेरे बड़े भाई प्रभु श्री रामचंद्र 14 साल के लिए वन में जा रहे हैं और उसके साथ तुझे जाना है, तो मुझे कोई पूछने की बात है, मुझे पूछने की जरूरत है, मुझे पूछने क्यों आ गया, तुम जाओ और 14 साल के लिए भगवान जी अपने बड़े भाई के साथ रहना, रामचंद्र के साथ रहना, और उसकी ऐसी सेवा करना, ऐसी सेवा करना कि एक मिनट के लिए भी राम को अयोध्या की याद ना आए। बहुत सुंदर उपदेश एक मां ने अपने पुत्र को दिया, ऐसी सेवा करना, ऐसी भक्ति करना कि राम को अयोध्या याद ना आए। जब तक सीता और राम खा न ले तो खाना मत, और जब तक राम सोए नहीं, जब वह सोए तो रात को उसका पैर दबाना और पूरी तरह से उसकी सेवा करना। और हे लक्ष्मण, हे पुत्र, आज मैं धन्य हो गई, 14 साल के लिए भगवान प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा करने के लिए तू जा रहा है, भजन करने के लिए जा रहा है, आज मैं धन्य हो गई, वास्तव में आज मैं पुत्र वाली हुई। अब तक मैं पुत्र वाली नहीं थी, भले तू था, लेकिन आज मैं पुत्र वाली हुई, क्योंकि आज से तू भगवान श्री राम की सेवा करेगा। और इस संसार की माताओं को आदेश, एक आदर्श देती है कि वही जननी, वही माता माता है जिसका पुत्र भगवान का भजन करे, भक्ति करे, वही माता पुत्रवती कहलाने के योग्य है जिसका पुत्र भगवान की भक्ति करे। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जातु सित होई। रघुपति का कोई भगत हो जाए, भगवान श्री कृष्ण का कोई भक्त हो जाए, उसकी माता ही पुत्रवती कहलाने के योग्य है। और अगर किसी माता का पुत्र भक्त नहीं है तो कहते उससे तो अच्छा है वो बांझ रह जाए, एक पत्थर को पाले पोसे जिसका पुत्र भक्त नहीं है। न तरु बांझ बलि बानी बियानी, राम विमुख सुखते हित नाही। भगवान श्री रामचंद्र के विमुख कभी भी हित नहीं हो सकता, सुख नहीं मिल सकता। इसलिए आज मैं धन्य हो गई, पुत्रवती मैं आज कहलाने के योग्य हो गई, क्योंकि तू आज से भगवान की भक्ति करने जा रहा है। तो इस प्रकार इस संसार के माताओं और पिताओं को अपने पुत्र को उत्साह देना चाहिए कि करो भजन,
हरिबो
नहीं कि रोकना चाहिए, और इतना न कह सके तो कोई बात नहीं, कम से कम उसे रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो नरक के भागीदार बनेंगे। भगवान से मिलाने से अगर किसी भक्त को रोका जाता है तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलती, जैसे ब्रह्मा जी को मिली। नहीं मना पाओगे भगवान को। तो हम भले भजन ना कर सके, लेकिन जो कर रहे हैं उसे करने देना चाहिए, और अगर कुछ करना चाहिए, करना है हमें, तो उसे उत्साह देना चाहिए। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे।
और ऐसा पुत्र जो भगवान का भक्त हो गया है, वह दोनों कुलों को तारता है, पिता के कुल को, पिता की जो पेढ़ियां है उसे भी तारता है, और माता की जो पेढ़ियां है, अपनी जो मामा की जो सीरीज है उसे भी तारता है। यही इसी बात पर मैं कह रहा हूं, हाल हेते हबे दुई कुलेर तार निस्तार, दोनों कुल को तारता है। भगवान श्री नरसिंह देव ने जब हिरण्यकश्यपु का वध किया, तो वध करने के बाद प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव भगवान से कुछ नहीं मांगा, लेकिन फिर भी नरसिंह देव भगवान ने कहा, आप मांगो मैं प्रसन्न हूं। तो प्रहलाद महाराज ने इतना ही कहा कि हे प्रभु, मैं मानता हूं हमारे पिता बहुत बड़े असुर थे, और हमारे पिता ने बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं तुम्हारे चरणों में, लेकिन मेरी एक इच्छा है, भले वो कैसे भी है तो मेरे पिता, इसलिए कृपया करके हमारे इस पिता को नरक में मत भेजना, किसी अच्छी गति को प्राप्त हो, यह बस एक मेरी इच्छा है। तब नरसिंह देव भगवान गर्जना करते हुए कहते हैं, प्रहलाद डरने की जरूरत नहीं है, तूने भजन किया है, तूने भक्ति की है, मुझे प्रसन्न किया है, तो तुम्हारी सात पीढ़ी, तुम्हारी पीछे की सात पीढ़ी और आगे आने वाली सात पीढ़ी, 21 पीढ़ी चली गई धाम में, और जो नहीं आई और जिस पीढ़ी का जन्म नहीं हुआ उसका रिजर्वेशन कन्फर्म है। और इतना ही नहीं, अपने माता की 21 पीढ़ी, माता की जो चल रही है उसके आगे की, उसके पीछे की, उसकी 42 पीढ़ी को तार देता है एक पुत्र। एक भजन करने वाला 42 लोगों को नहीं, 42 पीढ़ी को तारता है, इसलिए भजन करने देना चाहिए। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो यह है ते हवे दुई कुलेर निस्तार, दोनों कुल को तारता है, और यह जो बालक है यह दोनों कुलों को तारेगा, ऐसा नीलांबर चक्रवर्ती कह रहे हैं। महोत्सव कर सब बोला है ब्राह्मण, आज ही दिन भाल करीब नामकरण। जगन्नाथ मिश्र ने सोचा कि आज का दिन बहुत ही भाल है, भालो, बंगाली में भालो का अर्थ होता है सुंदर है, अच्छा है, आज का दिन बहुत ही परम पवित्र है, अच्छा है, इसलिए आज हमें नामकरण कर देना चाहिए इसका। तब बहुत ही बड़ा महोत्सव रखा गया और ब्राह्मणों को बुलाया गया। सर्व लोकेर करीबे इहा धारण पोषण, विश्वंभर नाम इहारे एत कारण। सब लोगों ने देखा कि हमें तो लगता है यह पुत्र को देखकर कि आगे चलकर ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा, इतना तेज प्रकट हो रहा है इसे, इसलिए इसका नाम विश्वंभर होना चाहिए। तब इस बालक का नाम विश्वंभर रखा गया। विश्वंभर से हमें एक बात याद आती है, प्रभु का एक नाम है विश्वंभर, और इसका अर्थ होता है सारे विश्व को का पालन पोषण करने वाले। वास्तव में भगवान ही सारे विश्व का पालन पोषण करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम किसी को कहते हैं आप भजन करो, भक्ति करो, मंदिर में आओ, प्रवचन में आओ, तब कहते हैं कि हमें ऑफिस में जाना है, कमाना है, अभी कमा लेता हूं, और कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, खाऊंगा नहीं तो भरण पोषण क्या करूंगा अपने पुत्र का और मेरा। लेकिन यहां पर देखिए, विश्वंभर नाम है भगवान का, सारे विश्व का वही भरण पोषण करते हैं, और वही जब हमें परमात्मा के रूप में शक्ति देते हैं तब जाकर हम कार्य करते हैं। तो वह अगर इस विषमभर की भक्ति की जाए तो डायरेक्ट हमारा भरण पोषण करेंगे। तो इस प्रकार से विषमभर नाम रखा गया। सुनी सची मिशेर मने आनंद बड़ील ब्राह्मण ब्रह्माणी ब्राह्मणी आनी महोत्सव केल तबे कत दिने प्रभु जानू चक्रमण नाना चमत्कार तथा कराईला दर्शन। अब प्रभु ने अब उस विषमभर ने उस बालक ने चमत्कार करना आरंभ किया। सबसे पहले तो बहुत ही थोड़े ही दिनों में अपने घुटने के बल चार पैर से चलना जिसे कहते हैं चलना सीख गया। कंदेर छेल बलाइल हरि नाम नारी सब हरि बले हासे गौर धाम। प्रभु की लीला भी अपरंपार है। प्रभु को प्रचार करना था लेकिन बहुत ही छोटा सा शरीर था, और इतने छोटे से शरीर में अब तो बोलना भी नहीं सीखे प्रचार कैसे करें। तब एक तरकीब सोची प्रभु ने, विषमभर ने जोर जोर से रोने लगे, बहुत जोर से, और कितना खिलौना दिया जाए खाना दिया जाए सब कुछ रखा जाए फिर भी बंद नहीं होते थे। अड़ोस पड़ोस की सारी स्त्रियां आकर एकत्रित हो जाती थी, अब इसे कैसे चुप किया जाए कैसे चुप किया जाए। जगन्नाथ मिश्रा ने कहा कि शायद इसे कोई भूत लग गया है, कुछ लग गया है, तो इसलिए अगर भगवान का नाम लिया जाए तो यह भूत उतर सकता है, इसलिए तुम सभी स्त्रियां हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। सभी स्त्रियां भगवान का नाम लेने लगो शायद यह वो भूत चला जाए। भगवान तो यही चाहते थे। तो सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र लेने लगे और भगवान तुरंत चुप हो जाते थे। जो विश्वंभर जो बालक इतना सारा खिलौना देकर खाने का पदार्थ देकर उसके घुमाने पर जो रोना बंद नहीं करता था वो एक बार हरे कृष्ण बोलने पर बंद हो जाता था। इससे सब लोग कीर्तन करना प्रारंभ कर देते थे और जब भी वो चाहते कि सबको कीर्तन करवाना है रोने लगते और कीर्तन सबको करना ही पड़ता था। तो बचपन से ही प्रचार आरंभ कर दिए। तबे कत दिने केल पद चक्रमण शिशुगण मिली करे विविध खेलन। और थोड़े ही दिन के बाद चक्रमण वो चलना सीख गए। और आप सब जानते हो जैसे जब तक बच्चा चलना नहीं सीखता तब तक तो माता का रहता है, लेकिन जब वह चलना सीख जाए तब वह मित्र का हो जाता है, मित्र के साथ खेलने लगता है। तो कई सारे मित्र बना लिए इसने। एक दिन सची खई संदेश आनिया बाटा भरी दिया बेल खाओ तो बसिया। एक दिन विशंबर बालक चैतन्य महाप्रभु अपने बच्चों के मित्र के साथ खेल रहे थे, तब माता सची उसके लिए खीर, तो आप सब जानते ही हो, और संदेश, संदेश का अर्थ होता है हमारी भाषा में पेड़े, पेड़े दूध की एक आइटम है जो पेड़े की तरह लगती है। तो एक दिन सची माता ने खीर और पेड़े का पात्र लेकर उस अपने बालक को दिया। ए तो बली गेला सची गृहे कर्म करीते लुकिया लागेला शिशु मृत्यु का खाईते। माता ने कहा कि तुम यह खीर और पेड़े खा लेना और मैं जाती हूं मेरा काम करने के लिए, और यह कहकर अपना गृह का काम करने के लिए चली गई। लेकिन यहां पर प्रभु ने खीर तो नहीं खाई और पेड़े भी नहीं खाए, मिट्टी खाना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे कृष्ण लीला में भगवान लीला किए ठीक उसी तरह चैतन्य लीला में भी इसी प्रकार भगवान लीला किए। कृष्ण लीला में भी भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई थी, और मिट्टी खाई तो बलदेव जी देख लिए, तुरंत यशोदा मैया के पास गए, और बच्चे की तो आदत होती है चाड़ी चुगली करने की, कह लगे कृष्ण ने मट्टी खाई है, मैं सच कहता हूं। मैंने कहा अच्छा मट्टी खाई है। बलदेव जी ने कहा कि तुम उसे समझाओ, अगर वो इस प्रकार मट्टी खाता रहा तो उसके पेट में कीड़े हो जाएंगे और बड़ा होकर उसे बहुत बड़ी बड़ी बीमारी आएगी, पथरी हो जाएगी। तो यशोदा मैया ने कहा ठीक है, आज मैं उसे उसकी खबर लेकर रहूंगी। तो यशोदा मैया आई कृष्ण के पास और कहने लगी कृष्ण तूने मट्टी खाई। तो कृष्ण बहुत ही छोटे थे, यशोदा मैया को आकर देखा, मुंह में मिट्टी थी तो पूरी मुंह में डाल दिए, लेकिन थोड़ी बहुत तो बच गई थी। तो कहा मिट्टी खाई, थोड़ी बहुत मुंह में थी इसलिए मुंह नहीं खोल सके। तो कहा श्रीमद् भागवत में लिखा है नाहम भक्षितवान अंबे, हे अंबे हे मां अहम न भक्षितवान, मैंने मट्टी नहीं खाई है। तो मां ने कहा तो क्या ये सब झूठे बोल रहे हैं, ये बलदेव जी और तुम्हारे जितने भी मित्र है वो झूठ बोल रहे हैं। तो कृष्ण कहते सर्वे मिथ्या भी संशीन, सब लोग मिथ्या, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ये सब लोग झूठ बोल रहे और तुम ही सत्यवादी हरिश्चंद्र बनकर आए हो। तो कृष्ण कहते यदि सत्य गिरे तर ही, यदि तुमको उस पर विश्वास है और मुझ पर विश्वास नहीं है तो देख लो मेरे मुंह में देख लो। हालांकि दिखाना नहीं चाहते थे, मां मान जाए इसलिए थोड़ा जोर देना चाहते थे, देख लो। तो माता छोड़ने वाली नहीं थी, मैंने कहा दिखाओ मैं देखना चाहते हूं, खोलो। यदि सत्य गिरह तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम, देख लो मेरा मुंह। तो जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला तो उसमें अनंत अनंत लोक, अनंत अनंत ब्रह्मांड, और उस अनंत ब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड में 17 लोक, और उस 17 लोक में बिल्कुल बीच में एक पृथ्वी, और पृथ्वी में एशिया, एशिया में मथुरा, मथुरा में वृंदावन, और उस वृंदावन में गोकुल में एक छोटी सी यशोदा मैया, छोटा सा कृष्ण। अद्भुत रूप यशोदा मैया ने उस अपने छोटे से बालक के मुख में देखा और देखकर ही बेहोश होकर गिर गई। आई थी कृष्ण को मारने के लिए, खुद बेहोश होकर गिर गई। खैर लेकिन भगवान ने अपने ऐश्वर्य की धारा ये सब भुला दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है जो लीला कृष्ण अवतार में किए, भगवान कृष्ण ने की, वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में लीला की। माता सची ने खीर और संदेश पेड़ा खाने दिया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने यह नहीं खाया, मट्टी खा ली। हालांकि चैतन्य महाप्रभु इसमें एक सिद्धांत स्थापित करना चाहते थे। सिद्धांत यह है, कुछ लोग कहते हैं, मैं पिछले ही अगले शुक्रवार शनिवार, दो शुक्रवार शनिवार पहले, आत्मा सु परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, सब एक है, अद्वैत। तो ऐसी सिद्धांतों, ऐसी फिलोसॉफी, मायावादी फिलोसॉफी का खंडन करते हुए वो बालक देखे क्या करता है। निमाई ने, चैतन्य महाप्रभु ने वह नहीं खाया और मट्टी खाने लगे, तब देखी सच्ची धाया आईला करी हाय 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 हाय, अरे बाप रे बाप, मैंने खीर और पेड़े खाने दिए और यह नटखट मट्टी खा रहा है। माटी काड़ी लिया कहे माटी कहने खाए, मुंह से मट्टी निकाल दी और माता कहने लगी तू मट्टी क्यों खाया, इतना सुंदर खाने को दिया फिर भी। तब कांदिया का अर्थ होता है रोना, कांदिया बले न शिशु केने करे रोष, रोते रोते कहते हैं क्यों मुझ पर गुस्सा करती हो, रोते रोते कह रहे हैं तुम ही माटी खाई थे दिले मोरा की बात दोष, तुमने तो मुझे माटी खाने को दिया और मैं मट्टी खा रहा हूं तो मुझे डांट क्यों रही हो। अजीब बात है, खई संदेश अन्न यतेक माटी रविकार, मैया मुझे यह बताओ यह संदेश और खीर माटी के ही तो विकार है। देखिए इतना छोटा बच्चा कितनी बड़ी बात कर रहा है, समझा रहा है कि यह खीर कहां से बनी, चावल और दूध से। अच्छा चावल कहां से आया, कहां से उगा? मट्टी से। अच्छा, दूध कहां से आया? गाय से। गाय में कैसे दूध आया? जब उसने घास चरा। घास कहां से आया? मट्टी से। तो मट्टी से ही दूध आया, मट्टी से ही खीर बना, मट्टी से ही पेड़ा बना। तो मैं मट्टी खाओ या पेड़ा खाओ, क्या अंतर है? देखिए कितनी बड़ी बुद्धि होती है। हालांकि बूढ़ों से बच्चे में ज्यादा बुद्धि होती है, भौतिक बूढ़ों की बात कर रहा हूं। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं। मैं रविवार का प्रोग्राम लेता हूं मंदिर में, और उसमें कई सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और उसमें हमारा ही एक छोटा सा भाई जिसका नाम है पार्थ, वह भी इसमें बैठा है, सुनता है बैठकर। तो उस दिन दिवाली का समय था, और मैं सबसे पहले हरि नाम की महात्मा बताया, एक बार नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान का नाम लेना चाहिए। और अंत में मैंने यह शिक्षा दी कि हम वैष्णवों को, भक्तों को फटाके नहीं फोड़ने चाहिए, और ये फोड़ने से कई सारे जीव जंतु मर जाते हैं, पाप लगता है। और फटाके आप खरीदते हो, आप फोड़ते हो, आनंद तो दूसरा लेता है, तो यह नहीं करना चाहिए, इसे पाप लगता है। तो जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ तो पार्थ नीचे, तब तो छोटा था, मेरे पास आया, कहने लगा, लाला भाई लाला भाई, हम एक हाथ से फटाके फोड़ेंगे और एक हाथ से माला करेंगे तो नहीं चलेगा? माला करने से पाप नष्ट होगा और फटाके फोड़ने से पाप होगा, तो एक साइड से पाप करेंगे और एक बाजू से माला करेंगे। देखिए उसकी बुद्धि कितनी चल रही है। बच्चों की बुद्धि बहुत होती है। तो यहां पर प्रभु कह रहे हैं कि दोनों माटी के ही विकार हैं, खीर और पेड़े, और तूने ही मुझे खाने दिया तो मुझ पर गुस्सा क्यों करती है? और एहो माटी सेहो माटी की भेद विचार, ये भी माटी है, ये भी माटी है, तुम्हारा शरीर भी माटी है, सब माटी है, क्योंकि माटी से ही तो बना है, माटी से खाते हो और जो खाते हो उसे शरीर बनता है। माटी देह माटी लक्ष्य देखे है विचारी, अविचारी देह दोष की बलित पारी। तुम पहले देखो सोचो, बाद में मुझ पर गुस्सा करो, ऐसे ही मुझ पर गुस्सा कर देती हो, रुलाती हो। अंतर विस्मित सची बलिल ताहारे, माटी खाईते ज्ञान योग के शिखाल तोरे। माटी रे विकार अन्न खाईले देह पुष्टि है, माटी खाईले रोग है देह थाय क्षय। तब माता सची ने कहा, नहीं नहीं, माटी में और खीर पेड़े में अंतर है। माटी माटी है, और यह जो है खीर और पेड़े, वो माटी का विकार है, भले वो मट्टी से आया है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्योंकि खीर खाने से हमारा शरीर हृष्ट पृष्ट होता है, और मट्टी खाने से देह है क्षय, पथरी हो जाती है और मर जाते हैं। तब सची माता ने कहा, भले माटी का विकार है खीर दूध, लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक उसी प्रकार भले हम भगवान से आए, लेकिन दोनों में अंतर है, आत्मा और परमात्मा में। बहुत ही सुंदर फिलोसॉफी है। माटी विकार घटे पानी भरी आनी, माटी पिंडे घरी यबे शोषी पाए पानी। माता सची कहती है कि पानी को भरने के लिए माटी का घड़ा हम लेते हैं, क्या कहते हैं, घड़ा ही माटी का, और उस माटी के घड़े में हम पानी भर सकते हैं, लेकिन माटी का पिंड लेकर आओ और उस पर पानी डालो तो उसमें पानी नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार माटी का घड़ा, भले दोनों माटी का है, लेकिन घड़ा घड़ा है, माटी का पिंड पिंड है, भगवान भगवान है, जीव जीव है। आत्मलोका इते प्रभु बोलीला ताहारे, आगे केन इहा माता ना शिखले मोरे। अच्छा माता, इतनी बड़ी बात है, ऐसी बड़ी बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं सिखाई? अब इसमें पहले कहां सिखाए, जब पेट में था तब सिखाए? अब जन्म हुए कुछ दिन हुआ है और कह रहे हैं मुझे यह बात पहले क्यों आपने नहीं बताई कि पानी घड़े में ही भरा जाता है, पिंड के ऊपर नहीं। इतनी बड़ी बात तो मुझे पहले बता देनी चाहिए आपको, और बता दिया होता तो मैं इस प्रकार मट्टी नहीं खाता। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को बचपन से ही भक्ति करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अब कितने छोटे हैं फिर भी कह रहे मुझे पहले से क्यों नहीं समझाया। तो बचपन से ही हमारे पुत्रों में, बच्चों में यह भक्ति का संस्कार देना शुरू कर देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने यह सिद्धांत स्थापित किया और प्रहलाद महाराज भी यही कहते हैं, कौमारेत आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। यह जो भजन भक्ति का कार्य कौमार अवस्था से ही करना चाहिए, बूढ़े होने के बाद नहीं। खैर, एबे से जानीला आर माटी ना खाईब क्षुधा लागे यबे तबे तुमार स्तन पीव। अब भूख लगेगा तब मैं माटी नहीं खाऊंगा, मैं आपका दूध पीऊंगा। एत बलि जननीर कोले ते चढ़िया स्तनपान करे प्रभु ईशत हसिया। यह बोलकर वह बालक एक जंप लगाकर अपनी माता के गोद में चले गए और माता का दूध पीते हुए हर्षित होने लगे। एही मते नाना छेल ऐश्वर्य देखाए बाल भाव प्रकटिया पाश्चात लुकाए अतिथि विप्रेर अन्न खाईल तीन बार पाछे गुप्ते सेई विप्रे कलीर करील निस्तार। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये एक ही प्यार में पूरी कथा कह देते हैं। तो चलने सीख गए थे हमारे प्रभु। एक दिन की बात है, एक बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण जो तीर्थाटन करते थे और अपना जीवन गुजारते थे, और ब्राह्मण अपने पास शालिग्राम शिला रखते थे और बाल गोपाल की छोटी सी मूर्ति रखते थे और उसके मुख से तेज प्रकट हो रहा था। तो जगन्नाथ मिश्रा ने इस ब्राह्मण को गांव में देखा और देखा और उस ब्राह्मण को अपने घर लेकर आए। ब्राह्मण को घर लेकर आए और ब्राह्मण को कहा कि हम आपके लिए क्या बना सकते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, मैं शालिग्राम शिला और गोपाल जी की छोटा सा विग्रह रखता हूँ, मूर्ति रखता हूँ, और इसके लिए मैं खुद स्वयं भोग बनाता हूँ और इस गोपाल जी प्रभु को चढ़ाकर मैं बाद में खाता हूँ, मैं दूसरों के हाथ से का नहीं खाता। तब जगन्नाथ मिश्रा ने कहा, ठीक है। जगन्नाथ मिश्रा ने अपना जो किचन था पूरा साफ करवा दिया और इस ब्राह्मण को कहा, ठीक है, आप इस किचन में जाइए, आपको जो कुछ भी चाहिए हमने रख साग भाजी सब रख दिया है, आप बनाकर प्रभु को भोग लगाकर आप आराम से खा सकते हो। तो वह ब्राह्मण गए किचन में और बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन शालिग्राम शिला और गोपाल जी के लिए बनाए। सुंदर सुंदर व्यंजन बनाने के बाद करीबन 2-3 घंटा तो लग गया बनाने में। तो 2-3 घंटे के बाद सुंदर व्यंजन बनने के बाद ब्राह्मण शालिग्राम शिला और ठाकुर जी को रखे और भोग की थाली रखी और प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप आइए, प्रभु आप आइए और इस भोग को ग्रहण कीजिए और इसका प्रसाद बनाइए। अब इतना कहते ही चैतन्य महाप्रभु जो निमाए दौड़कर वहां पर आया वह लड़का और सारा प्रसाद थोड़ा थोड़ा लेकर खाने लगा। ब्राह्मण ने आंख खोलकर देखा तो जोर जोर से चिल्ला, अरे बाप रे बाप, मैं प्रभु को भोग लगा रहा हूं शालिग्राम को और गोपाल जी को, और यह बालक ने सत्यानाश कर दिया, सारा बनाया बनाया पर पानी फेर दिया, सब झूठा कर दिया, अब दूसरी बार बनाना होगा। तब जगन्नाथ मिश्रा आए और देखे कि यह बालक ने बहुत ही सब झूठा कर दिया है। तब जगन्नाथ मिश्रा ने कहा, ठीक है, आप अब हमें क्षमा करना, हम निमाय को रख नहीं पाए, लेकिन आप दूसरी बार बनाइए और दूसरी बार हम इसका ध्यान रखेंगे, हमारे पुत्र का हम ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, दूसरी बार बनाने के किचन साफ कर दिया, साग भाजी ला दी, रख दिया और दूसरी बार ब्राह्मण बनाने लगे। दूसरी बार बनाए और 3 घंटा चला गया। 9 बजे से शुरू हुआ था शाम को, अब गिने कितना घंटा हो गया, रात को 2 बज जाएगा अभी। और 2-3 घंटा हुआ, भोग बना शालिग्राम और गोपाल जी को रखे, थाली रखी गई और प्रार्थना की कि आप आइए और इस भोग को ग्रहण कीजिए। निमाय को किसी बाहर लेकर गए थे जगन्नाथ मिश्रा, लेकिन वहां से आंख में धूल जोकर दौड़कर यहां पर आया और यह प्रार्थना जब आंखें बंद थी प्रार्थना कर रहे थे ब्राह्मण, आकर दूसरी बार झूठा कर लिया, दूसरी बार झूठा। अब तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरे नसीब में लिखा ही नहीं है यह आज का भोजन, मेरे नसीब में आज ये व्यंजन नहीं लिखा है, मुझे कुछ फल फ्रूट इत्यादि दे दीजिए, मैं खा लेता हूं, प्रभु ने मेरे लिए यही शायद कर्म में यही लिखा है। उतने में विश्वरूप जी मिश्रा के बड़े पुत्र चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई आए और प्रार्थना किए कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, हम इसे संभाल नहीं पा रहे हैं, बहुत ही नटखट है ये, लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूं कि इसको हम पकड़ कर रखेंगे और आप एक बार हमारी विनंती स्वीकारिए और बना लीजिए। तब बहुत बहुत कहने पर उस ब्राह्मण ने कहा ठीक है अब मैं बना लेता हूं। तब उस बालक को किसी घर पे लेकर गए और घर पे लेकर एक रूम में बंद कर दिया और सारी स्त्रियां उसे बातों में उलझाती रही और यहां पर ब्राह्मण ने और 2 घंटा लगा दिए बनाने में, और बनाने में सारा भोग तैयार हो गया। सारा भोग तैयार होने के बाद थाली रखी गई भगवान के सामने, भोग लगाया गया और प्रार्थना की प्रभु आप आइए और इसे ग्रहण कीजिए। निमाय को बाहर से कड़ी बंद रखी थी लेकिन वहां जितनी भी स्त्रियां उसके साथ थी सबको निला दिया, सुला दिया योग निद्रा में और कड़ी खोलकर दौड़कर यहां पर आकर वह खाने लगे और इसकी आंखें खुली ब्राह्मण की और वह तो पागल हो गए, अब क्या करूं, 3 बार रात के 2 बज गए बनाते बनाते। और जगन्नाथ मिश्रा बहुत ही डांटे उस बच्चे को, निमाय को बहुत ही डांटे और कहे कि, तब ब्राह्मण ने कहा डांटो मत, परेशान मत हो, मेरे नसीब में आज लिखा ही नहीं है। बहुत बहुत समझाने के बाद ब्राह्मण 4थी बार भोग बनाने के लिए तैयार हुए और 4थी बार जब भोग बनाए उसमें भी 1-2 घंटे लगाए। अब तो शॉर्टकट हलवा पूरी नहीं बनाए, थोड़ा बहुत बनाकर फिर भगवान के सामने रखा, शालिग्राम शिला और भगवान के सामने, और रखने के बाद प्रार्थना किए कि प्रभु आप आइए उसे ग्रहण कीजिए। तब निमाय तब भी आ गए, किसी को पता नहीं था, ब्राह्मण ही थे और निमाय वहां पर आए और खाने लगे। ब्राह्मण की आंख खुली, बोले जा रहे थे, मुंह पर हाथ रख दिया और षटभुज रूप का दर्शन इस ब्राह्मण को करवाया निमाय ने और कहने लगे क्या तुम कर रहे हो, मुझे 4 बार बुला रहे हो और मैं जब आ रहा हूं और खा रहा हूं और तुम कहते हो नष्ट कर दिया। पहली बार बुलाया मैं आया, प्रसाद लिया, भोग लिया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, तो आप फिर से क्यों बना रहे हो। तब सारा दर्शन दिया और कहा गया कि मैं अगले अवतार में भी, कृष्ण अवतार में भी आप हमारे घर आए थे, ये सारी हिस्ट्री बताई। तो ब्राह्मण खुश प्रसन्न हो गया, लेकिन कृष्ण ने निमाय ने कहा खबरदार यह बात किसी को मत बताना, क्योंकि मैं इस संसार में भक्त के रोल में आया हूं, किसी को पता नहीं चलने देना है मैं भगवान हूं, यह बात किसी को मत बताना, भले मैंने आपको षटभुज रूप का दर्शन करवाया है लेकिन बात किसी को मत बताना। लेकिन यह तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तब निमाय वहां से चला गया, षटभुज दर्शन अप्रकट हो गया। तब ब्राह्मण मन ही मन में प्रसन्नित होने लगे और आनंद विभोर होकर जितना भी खाना था खाने लगे, मुंह पे, हाथ पे, सिर पे, पैर पे लगाते हुए नाचने लगे, गाने लगे। और उसके सामने जगन्नाथ मिश्रा निमाय को, चैतन्य महाप्रभु को बहुत डांट रहे थे। अब ब्राह्मण को पता था कि यह भगवान है और भगवान को डांट रहे हैं, लेकिन भगवान ने ही कहा है किसी को बताना मत। ब्राह्मण का हृदय चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था तुम्हारे घर पे साक्षात परब्रह्म भगवान इष्ट षडेश्वर पूर्ण कृष्ण स्वयं है और तुम इसे डांट रहे हो, मार रहे हो। लेकिन बता नहीं सकते थे। तो ये कहते हैं अतिथि विप्रेर अन्न खाइल तीन बार पाछे गुप्ते सही विप्रे करिल निस्तार। इस प्रकार वह विप्र का ब्राह्मण का निस्तार किया और दर्शन दिया। फिर और एक लीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं चोरे लैया गेल प्रभु के बाहर पैया तार स्कंदे चढ़ी आयला तारे भुलाइया। निमाय को बहुत अच्छे अच्छे गहने पहनाते थे। शोक होता है ग्रस्त का कि हमारे लड़के भी अच्छे अच्छे गहने पहने, हाथ में पैर में नूपुर सोने की, गले में सोने का चैन, बहुत ही सोने का अलंकार पहना हुआ था निमाय ने। और एक दिन चलते चलते घर के बाहर निकल गया। बाहर निकला तो दो चोर की नजर इस निमाय पर हुई। मैं आपको यह नहीं बताया निमाय में क्यों बोल रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, इसलिए उसका नाम निमाय हुआ। विषम्बर तो हुआ लेकिन साथ में इसे निमाय भी कहते हैं, इसलिए मैं अभी निमाय ही कहूंगा। तो निमाय ने बहुत सारे गहने पहने थे, तो दो चोर की नजर उस निमाय के ऊपर गई और सोचा कि रास्ते में हम इसके गहने निकालेंगे तो ये चिल्लाएगा और सब लोग को जमा कर देगा, हम पकड़े जाएंगे, इसलिए हम गहने सहित इसको ही लेकर चले जाते हैं, इस बच्चे को ही हम लेकर जाएंगे और कुछ खिलौना बिलौना खाने पीना देंगे तो वो गुस्सा भी नहीं करेगा। तो दोनों चोर निमाय के पास गए और निमाय को समझाने लगे तुम्हें खिलौना चाहिए? निमाय ने कहा हाँ, तो खिलौना लेकर दिया और चलाते गए चलाते गए। निमाय ने कहा अब मैं थक गया हूँ चलते चलते, तो चोर ने उसे कंधे पर बैठा लिया और कंधे पर बैठकर चलते चलते उसे बहुत गांव से दूर 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 लेकर चले गए। और प्रयोजन यही था कि हम इसका जो जितना भी गहना है निकाल लेंगे और इसे छोड़ देंगे। रास्ते में कई सारी बाजार भी पड़ती थी तो निमाय कहते थे मुझे ये खाना है, तो वह चोर अब खाने नहीं देते तो वह चिल्लाने लगता बच्चा, इसलिए सब खाने पीने लेकर देते थे निमाय को। और चोर ने कहा कि हम बस अभी हमारे गांव में पहुंच जाएंगे और हम सारा गहना इसका निकाल लेंगे। लेकिन प्रभु ने अपनी योग माया के द्वारा निमाय ने ऐसा चक्कर चलाया। वह चोर दोनों घूमते तो रहे लेकिन घूमते घूमते उन्होंने सोचा हम हमारे गांव में आ गए हमारे गांव में, हमारा घर कहां पर है? तो देखा तो वह जगन्नाथ मिश्रा के घर पे ही वापस घूम फिर कर आए थे और वहां पर घर के अंदर उत्पात मचा था, कहां गया निमाय। और घर के दरवाजे के सामने वो दोनों चोर आकर खड़े थे और अब तो अब सोचने लगे कैसे हम भागे यहां से। निमाय को नीचे उतारे और दोनों भाग गए। और यहां पर सब लोग निमाय को ढूंढ रहे थे सुबह से, और जब निमाय को देखा ये तो यहां पर बाहर ही खड़ा है, तो निमाय को समझाने लगे कहां चला गया था। तब निमाय ने कहा दो जन थे, मुझे सैर कराए, मुझे खिलौना भी लेकर दिया, खाना भी दिया। तो सब लोग ढूंढने लगे वो दो जन कौन है, हम उसे पुरस्कार देंगे, लेकिन वह तो धूम दबाकर भागे थे। तो ऐसे दो चोर पर निमाय ने चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की। व्याधि छले जगदीश हिरण्य सदने विष्णु नैवेद्य खाइल एकादश दिने। एक समय की बात है, उसी समय में निमाय एक दिन बहुत बीमार हो गए, बुखार आ गया, व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि बुखार आ गया, बीमार हो गए और कितनी भी दवा कुछ भी करो उसकी बीमारी कम नहीं हुई। व्याधि छले जगदीश से हिरण्य सदने विष्णु नैवेद्य खाइल एकादश दिने। तब उस निमाय ने कहा पिताजी जगन्नाथ मिश्रा को कहा आप यहां आओ। और बाजू के गांव में जो कई माइल दूर था, निमाय ने कहा वहां पर एक हिरण्य पंडित है और वह भगवान विष्णु के बहुत ही घनिष्ठ भक्त है और उसने आज एकादशी है भगवान विष्णु के लिए बहुत अच्छे अच्छे 56 भोग बनाए हैं। अगर वो 56 भोग तुम मुझे लाकर खिलाओगे तो मेरी बीमारी हट जाएगी, मेरा बुखार उतर जाएगा। पहले तो सब लोग सोचने लगे ये यहां पर बैठा है और दो माइल दूर हिरण्य पंडित का घर है और इसको यहां पर बैठे कैसे पता चला कि वहां पर 56 भोग बनाया हुआ है। पहले तो बात पर विश्वास नहीं किए, लेकिन जगन्नाथ मिश्र ने सोचा ठीक है देख लेता हूं, अगर हो गया तो बीमारी कम हो सकती है। तो वो गए, कई माइल दूर गए हिरण्यगर्भ के घर में, और जाकर कहे कि निमाई ने कहा है कि आज आप एकादशी रहे हो, लेकिन भगवान विष्णु के लिए 56 भोग बनाए हो। हिरण्य पंडित ने कहा, हाँ मैंने भगवान विष्णु के लिए 56 भोग बनाए हैं। हिरण्य पंडित भी सोच में पड़ गए कि निमाई को कैसे पता चला वहां पर रह करके मैंने आज 56 भोग बनाए, भगवान ने ऐसा ऐश्वर्य प्रकट किया। और 56 भोग लेकर वापस आए, खिलाए, और निमाई ठीक हो गए। और यह हिरण्यगर्भ कृष्ण लीला में वासुदेव थे। शिशु सब लइए पाड़ा, पड़ सिर घरे, चोरी करी द्रव्य खाय मारे बालक कह रहे। अब देखिए, अब तो उत्पाद धीरे धीरे बढ़ रहा है निमाई का। सब मित्रों के साथ वह निमाई जब खेलता था तो खेलते खेलते किसी को भी मार देता था, किसी को पीट देता था, और किसी के घर पे जाकर चोरी कर लेता था। कभी मक्खन की चोरी, कभी दूध की चोरी, दूध फोड़ देता था, और किसी के घर पे जाकर जो बच्चे सोते थे उसके कान में उंगली करके रुलाता था, जैसे कृष्ण। अब कृष्ण याद आ ही जाते हैं। एक दिन सारी व्रज की गोपियां कृष्ण के उत्पात से परेशान होकर सारी शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास आई। यशोदा मैया के पास आकर सारी शिकायत का ढेर का ढेर, कृष्ण देखा इतनी सारी गोपियां हमारे घर आ रही हैं शिकायत लेकर, सबसे पहले मैया के पीछे जाकर छिप गए, छोटे से बाल बाल कृष्ण। और गोपी आकर कहने लगी, तुम्हारे कृष्ण को समझाओ, बहुत ही उत्पात हमारे नाक में दम कर दिया है। हे यशोदा मैया, या तो इस गोकुल में कृष्ण रहेगा या तो हम रहेगी, आज फैसला आपको आपके हाथ में है। यशोदा मैया ने कहा, क्या हुआ हमें यह तो बताओ। तब अब शिकायतों का ढेर खोल रही है गोपियां, कहती है कि यह कृष्ण तुम्हें पता नहीं है कितना नटखट है, हम जब पानी भरने के लिए जाती है तब यह हमारे घर में घुस जाता है, और हमारे घर में घुसकर हमारे जो सोए हुए बच्चे को कान खींचता है, कान में उंगली करता है और उसे रुलाता है। इतना ही नहीं, दूसरी गोपी कहते इतना ही नहीं, जब हम रोते हुए बच्चे को शांत करने के लिए घर पर जाती है तब वह बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलकर जितने भी बछड़े होते हैं उसे खोल देता है, और सारे बछड़े गाय का सारा दूध पी लेते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। तो मैया यशोदा ने कहा, तो उसे डांटना चाहिए, तो उसे डांटो फटकारो। तो गोपियों ने कहा, हमें यह भी करके देख लिया, हमने हम जब इसे डांटते तभी हंसता है और बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, हम जब इसे डांटती है कि तूने क्यों छोड़ा बछड़े को, तब यह छोटा सा बालक कहता है कि मैंने तुम्हारे बछड़े को छोड़ा या मेरे बछड़े को, तुम्हारे बछड़े को छोड़ा, और तुम्हारा बछड़ा जब दूध पिएगा तो तुम्हारा बछड़ा बलवान होगा या मेरा बछड़ा बलवान होगा। इतना कह के भाग जाता है। किसी गोपी ने कहा, इतना ही नहीं, ये हमारे घर में घुसकर जब हम बछड़े को छोड़ने के लिए जाती है तब फिर से घर में घुस जाता है, और घर में घुसकर मटकी से मक्खन निकालकर खाता है। मक्खन निकालकर खाए हमें कोई इतराज नहीं है, बालक ही कितना मक्खन खा सकता है, लेकिन वह अकेला नहीं है, ये उंगली दिखाकर ये अकेला नहीं है, इसकी पूरी टीम है, बंदर है, ग्वाल बाल सका सारे को, जितने भी लोग हैं उसे लुटा लुटा कर खाते हैं, और जब पेट भर जाए तब यहां वहां सब मक्खन फेंकते हैं, मटकी फोड़कर चले जाते हैं। तब मैया ने कहा, तो आपको वो मटकी थोड़ी ऊपर बांध देनी चाहिए। तब गोपियों ने कहा, हमने यह भी करके देखा, जब हम मटकी ऊपर बांधती है तब वो छोटा सा टेबल लेकर उसके ऊपर चढ़ के वो तोड़ता है। तो मैया ने कहा, और थोड़ा ऊपर बांधना चाहिए, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर बांधना। तो किसी गोपी ने कहा, यह भी हमने करके देख लिया, यह जब करती है तब बहुत बड़ी लकड़ी ढूंढता है, लकड़ी ढूंढता है और बिल्कुल बीच में एक होल करता है और जो मक्खन गिरता है सब ग्वाल बाल आकर खाते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर फोटो बनाए है, लकड़ी से एक होल करते हैं और लाइन लगाते हैं सब लोग सब लोग मुंह रख कर खाते हैं। तब किसी गोपी ने कहा, मैया ने कहा, और छत पे पूरा ऊपर बांध देना चाहिए। तब गोपी ने कहा, यह भी करके देखा, जब यह करती है तब सारे ग्वाल बाल मिलते हैं और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़कर और सबसे ऊपर कृष्ण रहता है और उसको उतार कर फोड़ कर तहस नहस करते हैं। आप इसका कुछ कीजिए, या तो हम रहेगी या तो आप रहेंगे। ठीक इसी प्रकार का उत्पात निमाए इस कलयुग में भी भगवान करने लगे, चोरी करने लगे, परेशान करने लगे। तब शिशु सब सची स्थाने केले निवेदन सुनी सची पुत्रे किचु दिला ओलाहन। सारे पड़ोस पड़ोस अड़ोस पड़ोस के लोग और बच्चे सच्ची माता के पास आते थे और कहते थे, आप निमाय को समझाइए, ये बहुत उत्पात मचाता है। केने चोरी कर केने मारह शिशुरे केने पर घरे चाह यह कीबा नहीं घरे। तब माता निमाय को डांटने लगी, केने चोरी करे, तू चोरी क्यों करता है, तेरे घर में कुछ कमी है और तू छोटे छोटे बालकों को मारते क्यों रहता है, और केने पर घरे यह कीबा नहीं घरे, क्या तेरा घर नहीं है कि दूसरे घर में जाकर बैठता है। शूनि क्रुद्ध हया प्रभु घर भीतर आया। प्रभु ने जब माता ने बस इतना ही कहा कि चोरी क्यों करता है, बालक को मारता क्यों है, अपना घर नहीं है कि दूसरे के घर में जाता है, लेकिन इतने में ही इतना कहने पर वह निमाय गुस्से हो गया। शूनि क्रुद्ध हया प्रभु घर भीतर आया और गुस्से होकर घर के भीतर आए, घर यात भांड छील फैली भार गया। और घर पे आकर जितने भी बर्तन थे सब गिराने लगे, मटके फोड़ने लगे और तहस नहस सारा घर उथल पाथल कर दिया। एक तो गलत काम भी किया और जब डांटे तो और भी घर का सारा तहस नहस कर दिया। तबे सची कोले करी कराइल संतोष लज्जित हैला प्रभु जानी निज दोष। तब माता जब सारा तहस नहस कर दिया तब प्रभु अब खड़े थे सब तहस नहस करके, तब माता जब घर के अंदर आई तब शर्मा गए। अब शर्मा ही जाना पड़ेगा क्योंकि माता मारेगी। अपना निज दोष मानकर प्रभु निमाय शर्मा गए। कबू मृदु हस्ते केल माता के ताड़न माता के मूर्छिता देखी करे क्रंदन। अब एक दिन की बात है, प्रभु ने अपने मृदु हाथ से, अपने कोमल हाथ से अपनी माता को मार दिया ताड़न, जैसे आज के बच्चे मारते हैं। तो जैसे ही माता को छोटे से निमाय ने मारा तो माता ने एक ड्रामा किया। निमाय के मारने पर सची माता बेहोश हो गई, छोटे से कोमल हाथ के इसे थप्पड़ से बेहोश हो गई। और माता के मूर्छिता देखी करे एक रंदन, और माता को मूर्छित होकर देखकर निमाय रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, हमारी मां मर गई, एक थप्पड़ मारा मर गई। तब आसपास की स्त्री आती है, नारी गण कहे नारी केल देही आनी तबे सुस्त है बेले तुम्हार जननी। सारी स्त्रियां कहती हैं, अब सारी स्त्रियां को भी पता है ये एक्टिंग ड्रामा कर रही है, लेकिन कहती अगर तुम दो नारियल लेकर आओ निमाय, तुम दो नारियल कहीं से लेकर आओ तो ये जिंदा हो सकती है, नहीं तो। सारी स्त्रियों को पता था कि इस नदिया में, इस घर के आजू बाजू में एक भी नारियल का पेड़ नहीं था, या नहीं तो दुकान थी, लेकिन प्रभु ने चमत्कार किया, घर के बाहर गए और ऐसा चमत्कार किया दो नारियल लेकर अंदर आए। सारी स्त्रियां बहिरे आया आनियल दुई नारी केल देखी अपूर्व हेल विस्मित सकल। बाहर जाकर तुरंत दो नारियल लेकर आ गए और जैसे ही लोगों ने देखा कि दो नारियल इसके हाथ में है, सब लोग विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि बिना पेड़ के, बिना दुकान के नारियल आया कहां से। तो भगवान है, अगट्ट घटना पठिये सी भगवान की शक्ति, जो चाहे सब कर सकती है। कबू शिशु संगे स्थान करेले गंगा थे, अब बहुत ही सुंदर लीला आ रही है। अब कभी कभी वह छोटा सा निमाय अपने मित्रों के साथ गंगा में स्नान करने के लिए जाता था। कन्या गण आइला ताहा देवीता पूजी ले, और जब वह गंगा में स्नान करने के लिए जाते निमाय अपने मित्रों के साथ, तो वहां पर कुछ कन्या, कुछ छोटी छोटी बालिका 16 साल की, 14 साल की, 15 साल की, गंगा पूजा करने के लिए और गंगा तट पर देवताओं की पूजा करने के लिए आती थी। हम देखते हैं आज भी भारत में यह प्रथा है, अच्छा प्रति पति प्राप्त करने के लिए लोग शिव पार्वती व्रत रहते हैं, अलग अलग देवताओं को कात्यायनी जी की पूजा करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कुछ कुछ बालकियां वहां पर आती थी। गंगा स्नान करी पूजा करी ते लागीला कन्या गण मध्य प्रभु आसिया वसीला। सारी स्त्रियां सबसे पहले गंगा स्नान करती थी और गंगा स्नान करके अपने घर से सारी पूजा का सामान लेकर आती थी, कुछ प्रसाद, फोटो देवताओं का और अगरबत्ती, फूल का माला, थाली पूरा प्लेट लेकर आती थी और स्नान करके पूजा करने के लिए गंगा के तट पर बैठती थी। सारी लड़कियां बैठती थी और निमय उसके बीच में जाकर बैठ जाते थे। कन्या गण मध्य प्रभु आसिया बसीला, उसके बरोबर बीच में जाकर बैठ जाते थे। कन्या एर कहे आमा प्रुज आमी दिल वर। अब वो निमा है छोटा सा, वो कहते हैं कि तुम ये किसको पूज रहे हो, ये सबको पूजना बेकार है, तुम मुझे पूजो मुझे, और आमी दिब वर, मैं वर दूंगा तुम्हें। गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर। ये जो गंगा दुर्गा तुम जिसकी पूजा कर रहे हो, जिसकी पूजा करके तुम अच्छा पति प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हो, तो जो गंगा और दुर्गा तो मेरी दासी है, गोलोक धाम में झाड़ू मारती है, यही अर्थ हुआ दासी। और गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर, और देव देव महादेव शिव जी मेरे किंकर है, मेरे नौकर है, तुम मुझे पूजो, आमी दिबो वर, मैं तुम्हें वर दूंगा, तुम इसको क्यों पूज रहे हो। बालक की यह बात को देखकर सब लोग गुस्से हो गए। कृपा जी बहुत बड़ा परपट लिखे हैं इस पर, अब समय नहीं है, नहीं तो यहां पर प्रूफ करना था कि भगवान भगवान है, भगवान एक ही है, वो है कृष्ण। आपनी चंदन परी परेन फूल माला नैवेद्य काढ़िया खान संदेश चाल कला। प्रभु जब इस प्रकार कहते थे कि मुझे यह हार माला अगरबत्ती, ये जब संदेश और जो भी प्रसाद लाए हो, भोग लाए हो, मुझे अर्पण करो, तुम्हें मैं वर दूंगा, लेकिन किसी की भी लड़की की यह हिम्मत नहीं होती थी कि इसके गले में माला डाले, ये करे वो करे। और जितनी भी लड़कियां थी वह क्रोध करने लगती थी। क्रोध कन्या गण कहे सुन है निमाय, हे निमाय सुन, क्रोध से ग्राम संबंध हया तुम्ही आमा सबर भाई। हमारा और तुम्हारा गांव का संबंध है, हम देखते हैं एक गांव के जो लोग हैं उसमें कभी विवाह नहीं होता। तो वह कन्या कहती है कि निमाय, क्रोध से कहती है कि हम दोनों एक ही गांव के हैं और एक ही गांव के होने के कारण हमारा संबंध भाई बहन का है, इसलिए भाई होने के नाते मैं तुम्हें समझा रही हूं, तुम समझ जाओ, ये कार्य मत करो। आमा सभाकार पक्षे इहा करेता न युयाय ना लह देवता सज ना कर अन्याय। हे निमाय, तुम हमारे भाई हो और तुम्हें ना युयाय, तुम्हें यह शोभ नहीं रहा है और तुम यह देवताओं के प्रति अन्याय अपराध कर रहे हो। पंडित विद्वग्ध युवा धन धान्यवान सात सात पुत्र हबे चिरायु मतिमान। क्षमा कीजिए, प्रभु कहे तोमा सभा के दिले एवर तोमा सावार भरता हबे परम सुंदर। और इतना कहे के जब निमाय कहते थे मैं ही परम हूं और मैं ही वर दूंगा, तब कुछ कुछ लड़कियां अब निमाई के गले में डाल देती थी, निमाई के गले में हारमाला डाल देती थी और नैवेद्य जो भोग था वो दे देती थी। तब प्रभु कहते, प्रभु कहे तुम्हार सभा के दिले यही वर, मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा, ऐसा वरदान दूंगा तुम्हार सभार भरता, तुम सबका पति हबे परम सुंदर, सब तुम सबका पति परम सुंदर होगा, मैं ऐसा वर दूंगा तुम्हें। और इतना ही नहीं, पंडित विद्वत युवा धन धान्यवान धन धान्यवान होगा, धनी होगा, और सात सात पुत्र हबे, पुत्र हबे चिरायु मतिमान, और तुम्हारे एक एक के सात सात पुत्र होंगे और सातों सात पुत्र बहुत चिरायु लंबी आयु के और बुद्धि वाले होंगे, मैं ऐसा वर दूंगा, और कन्फर्म सर्टिफिकेट के साथ। तब कुछ लड़कियां मान जाती थी यह बात को, वर सुनी कन्या करे अंतर संतोष, बाहिरे भत्सरना करे करी मिथ्यारोष। यही यह प्रेम का स्वभाव है, प्रेम का यह स्वभाव है, अंतर से बहुत प्रेम होता है, संतोष होता है, लेकिन बाहर से गुस्सा होता है। तो वर शून्य कन्या गणेर अंतेर संतोष, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने निमाई ने यह कहा कि मैं तुम्हें यह वर दूंगा, तुम्हारा पति सुंदर होगा, सात सात पुत्र होंगे, धनी होगा, चीर आयु होगी, तब संतोष होता था, ठीक है, यह ठीक है, हमें इसे माला पहनानी चाहिए, इसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ लड़कियां लोग भाग जाती थी, कौन कन्या पलाइल नैवेद्य लैया, तारे डाकी कहे प्रभु से क्रोध हैया। और जो लोग भाग जाते थे, निमय को हार और इत्यादि नहीं प्रसाद नहीं देते थे, तो उसके पर क्रोधित हो जाते थे निमय, और क्रोधित होकर यदि नैवेद्य ना देह हैया कृपणी, हे कृपणी, हे कंजूस, तुम मुझे माला नहीं पहरा रही हो, तुम मुझे भोग नहीं दे रही हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, बूढ़ा भरता है वे, तुम्हारा पति बूढ़ा होगा, बूढ़ा मिलेगा, तुम 16 साल की हो और तुम्हारा पति 40-50 साल का होगा, और आर चारे चारे सतीनी, और तुम्हारी चार चार सोत होगी, ये मेरा श्राप है तुम पर। और यह सुनकर जो डरी हुई भागी हुई लड़कियां थी और डर कर वापस आ जाती थी कि यह श्राप शायद सच्चा न हो जाए, इसलिए वापस आकर यह सुनी तासाबर मन हैल भय, यह सुनकर सभी लड़कियों के मन में भय होता था, और कौन किच्छु जाने की बा दिवा विष्टोर, और मन में सोचते थे क्या पता शायद यह कोई बड़ा देवता भी हो सकता हो, इसलिए हमें भागना नहीं चाहिए। आनिया नैवेद्य तारा सुमुखे धरिल, खाइया निषेध तारे इष्ट वर दिल, और बहुत ही पेट भरकर निमाय खाते थे नैवेद्य और बहुत बड़े बड़े वर देते थे। एई मत चापल्य सब लोकेर देखाए, दुख कारो मने नेह सबे सुख पाई, और यह लीला को देखकर सब लोग मन ही मन में हर्षित होते थे और आनंदित होते थे। समय कम होने के कारण प्यार को आराम दिया जाएगा। अरे ठीक है, एक दिन की बात है, निमाय बहुत ही छोटा था और चार पैर पर चलकर, दो पैर पर चलना जब नहीं सीखा था, पहले की बात है, तो माता सची अपना गृह कार्य किचन में कार्य कर रही थी और बाहर एक बहुत बड़ा सांप आया, सांप आया और यह निमय उस सांप के साथ खेलने लगा, और खेलते खेलते वह सांप गोल गोल हो गया और निमय उस पर बैठकर आराम से सो गए। वास्तव में वह जो नाग था वह साधारण नहीं था, वह शेष अनंत शेष था, प्रभु का दर्शन करने के लिए आया था, और निमय उसके साथ खेल रहे थे। अचानक माता सची की नजर उस पर पड़ी और देखा कि निमय के बाजू में सांप है और सांप के ऊपर बैठा है, उसके तो होश उड़ गए और दौड़ कर गई और निमय को पकड़ लिया और सांप को भगाने लगे। लेकिन फिर भी निमय माता के पास नहीं जाना चाहते थे, माता को छोड़कर उस सांप के साथ खेलना चाहते थे, माता को कहते थे मुझे खेलने दीजिए, खेलने दीजिए। और फिर एक दिन निमय की नामकरण विधि रखी गई। नामकरण विधि में एक नामकरण जब होता है तब एक विधि होती है, उस विधि में कुछ खाना रखा जाता है, कुछ ग्रंथ रखा जाता है, कुछ अस्त्र रखा जाता है, कुछ शस्त्र रखा जाता है, अलग अलग चीजें रखी जाती हैं। और वह बालक जिसे हाथ लगाए तो समझा जाता है कि वह पूरे जीवन में इसका अभ्यस्त होगा। अगर कोई उस खाने की के पदार्थ को हाथ लगाए तो समझ लेना चाहिए यह पूरा जीवन खाते ही रहेगा। यह विधि होती है जब नामकरण होता है। तो निमाय की जब नामकरण विधि थी तब यह जब विधि की गई तब निमाय ने सब कुछ को न देखते हुए भागवत और गीता जो थी उस पर हाथ रखा। नीलामण चक्रवर्ती ने कहा यह बहुत बड़ा शास्त्र का वेद का ज्ञाता होगा। तो इस प्रकार से निमाय के 5 वर्ष बीत गए, 5 साल के हो गए। 5 साल के होने के बाद, 5 साल से जब बड़े होते तब उसे पौगंड कहा जाता है। पौगंड लीला में सबसे पहले निमाय को हथे खड़ी का संस्कार किया गया। जब बच्चे को स्कूल में दाखिल करते हैं तो उसके हाथ में चौक दिया जाता है और उसका हाथ पकड़कर पहला अक्षर जीवन का लिखाया जाता है, उसे हाथे खड़ी कहते हैं। तो पहली बार निमाय को उस हाथे खड़ी का संस्कार किया गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह कि बहुत ही जल्द निमाय लिखना और पढ़ना सीख गए। और आगे की लीला में धीरे धीरे निमाय बड़े हुए और सारे शास्त्र और वेद पे उसका अध्ययन शुरू हुआ। लेकिन एक दुर्घटना हो गई जगन्नाथ मिश्रा के जीवन में। दुर्घटना यह थी कि जब जगन्नाथ मिश्रा ने सोचा कि हमारा बड़ा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है तो उसके लिए योग्य पत्नी चुनना प्रारंभ किया। लेकिन विशंबर जन्म से भक्त थे और वो भक्ति करना चाहते थे, और जैसे ही उसे पता चला कि हमारा विवाह हमारे पिता कराएंगे, इतना जानकर किसी को बताए बिना बोले बिना घर छोड़कर चले गए वन में, संन्यास ले लिए। और इस पर जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता बहुत ही दुखी हुई। लेकिन छोटे से निमाय 5 साल के थे, वह निमाय ने सांत्वना दी अपने माता पिता को कि आपका एक बेटा चला गया तो क्या हुआ, मैं तो बचा हूं ना, मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगा, मैं तुम्हें रखूंगा, मैं तुम्हारी सारी वांछा सारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। बहुत ही सुंदर उपदेश दिया निमाय ने और सांत्वना दी। और फिर 5 साल के बाद निमाय को जब पहले धोरण में रखा जाता है, निमाय को जैसे रखा गया, निमाय पढ़ने में बहुत ही होशियार थे, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। जगन्नाथ मिश्रा ने देखा कि बहुत ही ब्रिलियंट है, इसे पढ़ाना नहीं चाहिए, इसे स्कूल से दाखिला निकाल दिया जगन्नाथ मिश्रा ने। सारे अड़ोस पड़ोस के लोग, सारे स्कूल में पढ़ाने वाले आ गए और कहने लगे आपका निमाय पढ़ने में इतना ब्रिलियंट है, इतना बुद्धिमान है, क्यों इसे नहीं पढ़ा रहे हो। तब जगन्नाथ मिश्रा ने कहा कि हमारा जो बड़ा बेटा था वह भी पढ़ने में होशियार था और इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, ज्ञान हुआ तो घर छोड़कर चला गया। मुझे डर है अगर मैं इसे पढ़ाऊंगा तो यह भी घर छोड़कर ना चला जाए। लेकिन सारे गांव वाले कहने लगे और सारे गांव वालों के कहने पर जगन्नाथ मिश्रा ने फिर से निमाय को पढ़ने के लिए बिठा दिया। लेकिन पढ़ने के लिए उस नदिया की सबसे फेमस स्कूल में, आज भी हम हमारे बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, बहुत ही फेमस स्कूल में उसे भेजा गया। और वहां पर उसके मुख्य गुरु थे गंगादास पंडित। गंगादास पंडित निमाय के गुरु थे और बहुत ही सुंदर स्कूल में पढ़ते थे। और स्कूल से छूटने का समय था 12 बजे, सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक स्कूल में पढ़ते थे और 12 बजे स्कूल से छूटते थे, और छूटते ही अपने मित्रों के साथ गंगा में स्नान करने चले जाते थे। ये बचपन की लीला। गंगा में स्नान करके लोग अलग अलग स्कूल से गंगा में स्नान करने के लिए आते थे, तो सब लोग अपने अपने स्कूल की बड़ाई करते थे, अपने अपने गुरु की, जैसे हम बचपन में करते हैं, अरे तेरी स्कूल तो एम के स्कूल तो बेकार है, हमारी सेंट फ्रांसिस अच्छी है, ये अच्छी है वो अच्छी, तब सब लोग अपने अपने गुरु की बड़ाई करते थे, मेरा गुरु ये है, हमारे गुरु ये है, हमारे गुरु, निमाय भी अपने गुरु की बड़ाई करते थे, गंगादास पंडित जैसा गुरु हो ही नहीं सकता, उसमें ये है वो है, और अपने गुरु की बड़ाई करने में निमाय अव्वल नंबर थे, किसी के सामने निमाय के सामने कोई टिक नहीं सकता था अपने अपने गुरु की बड़ाई करने में। और अगर कोई नहीं मानता कि गंगादास पंडित अच्छे गुरु नहीं है, तो फिर उसी स्नान करते करते गंगा में ही हाथापाई होने लगती थी और जगने लगते थे एक एक दूसरे के साथ, और जितना भी गंगा का जो गंगा तट का जो मट्टी और पानी रहता था वो हाथापाई करने में पूरा खोल जाता था, और जो भी स्त्रियां पानी भरने के लिए आती तो साथ साथ में मट्टी भी आती थी, सारी स्त्रियां भी क्रोधित हो जाती थी इस पर। तो इस प्रकार गंगादास पंडित के पास निमाय पढ़ते थे, और पढ़ते पढ़ते इतने ब्रिलियंट इतने बुद्धिमान हुए, बहुत गर्व था अपनी विद्या पर निमाय को बचपन में। बड़े बड़े विद्वान को कहते थे हमारे साथ तर्क करो, हमारे साथ किसी श्लोक की व्याख्या करो, और बड़े बड़े पंडित जानते थे ये बहुत ही ब्रिलियंट है, तब निमाय कहते थे मैं जो बोल रहा हूं वह ठीक है, मैं इस शब्द की व्याख्या कर रहा हूं यह ठीक है, तो निमाय उस शब्द की व्याख्या करते थे। सबसे पहले तो उसे कहते थे आप इसके शब्द की व्याख्या कर सकते हो, सामने वाला पंडित कहता था नहीं, तब निमाय उसकी व्याख्या करते थे, और निमाय कहते थे यह व्याख्या ठीक है, इसमें कोई दोष है या नहीं, तो वह पंडित कहते थे नहीं इसमें कोई दोष नहीं है, तब निमाय कहते थे इसमें दो दोष है, अपनी ही व्याख्या में दो दोष है ऐसा कहते थे। तो पंडित कहते दिखाइए दो दोष, तो ये दो दोष है, दो दोष दिखाकर कहते थे अब तो ये व्याख्या बराबर हुई, तो वो पंडित हाँ अब बराबर हुई, अब तक दो दोष था बराबर, निमाय ने कहा अब पांच दोष है इसमें, अपनी खुद व्याख्या करते थे और अपनी व्याख्या में दोष निकालते थे, और दिखाकर फिर उसे फिर क्लियर करके कहते थे। इस प्रकार से चार पांच बार वह अपनी अपनी व्याख्या को तोड़कर दिखाकर वह अपना ज्ञान प्रस्तुत करते थे। नदिया के मायापुर के इतिहास में निमाय की बुद्धि जैसी किसी की बुद्धि नहीं थी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहां पर कहते हैं। एक दिन निमाय, जैसे हम पान खाने का किसी किसी को बहुत शौक है, पान खाने का किसी किसी को बहुत शौक है, तो निमाय ने एक दिन पान खा लिया भूल से, तो पान खाकर जैसे ही पान खाया बेहोश होकर गिर गए। हमें उपदेश देने के लिए कि कभी भी किसी को मादक चीज मादक वस्तु या नशीली चीज नहीं खानी चाहिए, सादा पान भी नहीं खाना चाहिए। कोई कहेगा विष्णु को हमारे संप्रदाय में यह पान तो भगवान को भोग लगता है, तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान को भोग लगाया हुआ पान भी हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो भगवान खा सकते हम नहीं खा सकते। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल एक उदाहरण देते हैं, जैसे एकादशी के दिन, एकादशी की जो तिथि है हमारे लिए है भगवान के लिए नहीं है, एकादशी के दिन भगवान अन्न खा सकते हैं लेकिन हम नहीं खा सकते, ठीक उसी प्रकार भगवान पान खा सकते हैं लेकिन हम नहीं खा सकते, एक सिद्धांत है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु पान खाकर बेहोश हो गए, और बेहोश होकर यह दिखाया कि किसी को मादक चीज पान तंबाकू सिगरेट नहीं खाना चाहिए। अब एक दिन की बात, निमाय अपनी माता को के चरण में दंडवत प्रणाम किए, माता ने सोचा आज क्या हो गया इसे, माता को कहा हे मैया मुझे आपसे एक दान चाहिए, मुझे दान दोगी? माता ने कहा एक नहीं सौ दान दूंगी, क्या चाहिए तुम्हें? तब निमाय ने कहा कि मैया आज से तुम एकादशी व्रत का पालन करना शुरू करो। मैया ने कहा ठीक है, मैं आज से एकादशी व्रत का पालन करूंगी। इस प्रकार से 5-6 साल की आयु में निमाय अपने माता पिता को एकादशी व्रत रखवाना शुरू कर दिए। इस संसार को उपदेश दिए कि सभी लोग को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एक दिन जगन्नाथ मिश्रा सो रहे थे तो उसको सपने में अपना निमाय, बहुत ही भयानक सपना आया, और उस सपने में यह आया कि निमाय अपना सारा बाल काट दिया है और बाल काटकर घर छोड़कर सन्यास ले लिया है। और इस प्रकार का सपना देखे और जगन्नाथ मिश्रा को मन में होने लगा कि अब निमाय वास्तव में सन्यास ले लेंगे, इतना पढ़ चुका है, इतना ज्ञान है। और इसी वक्त इसी समय में जगन्नाथ मिश्रा की मृत्यु हो गई, जगन्नाथ मिश्रा चल बसे। अब माता शची अकेली और अकेला निमाय दोनों ही घर में बचे। लेकिन पिता के जाने के बाद, अपने भैया के जाने के बाद भी निमाय की शरारत कम नहीं हुई। निमाय तो वही के वही ही शरारती ही रहे। माता विधवा है, फिर भी निमाय एक दिन अपनी माता को कहे कि मुझे गंगा स्नान करने के लिए जाना है, मुझे एक फूल का हार चाहिए और तेल चाहिए, तो कुछ कारणवश घर पे नहीं होगा। तो माता ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बाहर से लाकर देती हूं। निमाय ने कहा बाहर से लाकर देती हूं? बस इतना कहते ही निमाय गुस्से में आ गए और लकड़ी लेकर सारे बर्तन मटके सब कुछ तोड़ फोड़ कर तहस नहस कपड़े फेंक दिए बाहर, कबाड़ गिरा दिए, सब कुछ तहस नहस कर दिया, तहस नहस कर दिया। तब माता शची ने निमाय को समझाया, समझाकर फिर निमाय को यह भी उपदेश दिया कि अब हमारा भरण पोषण कैसे होगा, तुम्हारे पिता नहीं रहे, तुम इस प्रकार की शरारत कर रहे हो। तब चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर उपदेश दिया कि जिसने यह शरीर दिया है, जो यह शरीर देता है वही शरीर को टिकाए रखने के लिए भोजन भी देता है, जो मुंह चीरा है वो खाना भी देगा। बहुत सुंदर कथा भी है, खैर वह कथा नहीं करनी है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा भगवान ने यह शरीर दिया है तो उसको बनाए रखने के लिए भोजन की सुविधा भी दी है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अब घर चलाना होगा, इसलिए वह एक ट्यूशन क्लास खोले और उसमें वह व्याकरण सिखाना प्रारंभ किए, व्याकरण सिखा रहे थे। और अब 10 साल के हो गए, 10 साल के हो गए। तब चैतन्य महाप्रभु ने मन ही मन में सोचा, एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे कि लगता है मुझे अब विवाह कर लेना चाहिए। 10 साल का, माता भी बूढ़ी हो गई है, काम ठीक से होता नहीं है, और मुझे विवाह, ऐसे मन में सोचे चैतन्य निमाय। और उसी वक्त वनमाली घटक, उस नदिया गांव में एक, जैसे हमारे समाज में भी होते हैं जो विवाह करवाते हैं, क्या कहते हैं उसे, जो विवाह करवाते हैं, जो लड़कियों की ओर से भी रहते हैं, लड़के की ओर से भी रहते हैं और दोनों को मिलाकर विवाह कराते हैं, वहटियो। तो ऐसा वहटिया तो वनमाली घटक नाम के का वहटिया था। वनमाली घटक एक दिन सच्ची माता के पास आए और सच्ची माता को कहने लगे अब तुम्हारा निमाय 10 साल का हो गया है, बड़ा हो गया है। वास्तव में पहले के जमाने में बचपन से ही शादी विवाह कर देते थे, आज भी किसी किसी जगह पर यह है। तो वनमाली घटक ने कहा कि निमाय के लिए मैंने एक अच्छी लड़की देख कर रखी है, तो आपकी इच्छा है सच्ची माता ने इच्छा नहीं दिखाई कि हमारी ऐसी इच्छा कोई नहीं है, तो वनमाली घटक चले गए। अब निमय को यह बात पता चला कि वनमाली घटक घर पे आए थे और किसी लड़की का मांगू लेकर आए थे और हमारी माता ने ना कह दिया। निमय गए माता के पास और माता को अब शर्म आ रही थी, तो इतने गए, माता मैंने सुना वनमाली घटक यहाँ पर आए थे। माता ने कहा हाँ, क्यों आए थे? तो माता ने काम करते करते कहा कि वह तेरे लिए एक अच्छी लड़की का न्योता लेकर आए थे। तो माँ तुमने उसे ना कर दिया? बस इतना कहा, माता समझ गई ठीक है ठीक है माँ तुमने उसे ना कर दिया माता समझ गई निमाय की इच्छा है। दूसरे ही दिन वनमाली घटक को बुलाए और कहने लगे, तुम जो बात कर रहे थे वह आगे चलाइए और हम तैयार हैं। तब वनमाली घटक वल्भाचार्य की पुत्री लक्ष्मी प्रिया, जिसका नाम था, वह साक्षात लक्ष्मी जी थी, सीता जी का अवतार थी, वह लक्ष्मी प्रिया के वल्भाचार्य के साथ बात की कि आपकी पुत्री का विवाह मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र निमाय के साथ तय करना है। दोनों राजी हो गए और 10 साल की उम्र में निमाय का विवाह लक्ष्मी प्रिया के साथ किया गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। अब एक लीला सुनकर मैं आज विराम दूंगा। लीला यह है, चैतन्य निमाय एक दिन अपनी ट्यूशन या पाठशाला में व्याकरण सिखा रहे थे अपने छात्रों को। एक दिन की बात है, निमाय अपने छात्रों को व्याकरण पढ़ा रहे थे और उस वक्त एक ब्राह्मण जो जिसे अपने ज्ञान पर, अपने विद्वत्ता पर बहुत ही अभिमान था और वह मन में ठान लिया था कि मैं इस भारत के, इस दुनिया के सभी ज्ञानियों के साथ मिलूंगा और वह ज्ञानियों के साथ तर्क करूंगा और सभी को हराऊंगा, और प्रायः वह पूरी दुनिया को हरा लिया था वह ब्राह्मण। उस ब्राह्मण का नाम था केशव और वह रहने वाला था कश्मीर का रहने वाला वह ब्राह्मण था केशव, इसलिए उसका नाम केशव कश्मीरी हुआ। वह केशव कश्मीरी पूरी दुनिया पर दिग्विजय करते हुए, दिग्विजय सार्वभौम की पदवी प्राप्त कर ली, लेकिन उसने सुना कि पश्चिम बंगाल में नदिया नाम का जो गांव है वो विद्या का नगर है और वहां पर बड़े बड़े विद्वान रहते हैं। अब सारे दुनिया पर तो मैं विजय प्राप्त कर चुका हूं, बस एक नदिया में जाना बाकी रहा है। तो वह केशव कश्मीरी नदिया की ओर चला, नदिया में आने के लिए और तर्क वितर्क करने के लिए। और केशव कश्मीरी अकेला नहीं चलता था, केशव कश्मीरी अपनी पूरी सेनाओं को साथ में लेकर चलता था और वह सिर्फ किसी विद्वान को हराता नहीं था, जो विद्वान उससे हार जाए उसको अरेस्ट कर लेता था और उसकी सारी संपत्ति धन वह खुद रख लेता था। ज्ञान के नाम पर बहुत बड़ा पाखंड चढ़ाने वाला यह केशव कश्मीरी घूमते घूमते नदिया गांव के सिमाड़े में आ गया और कहने लगा, यहां पर ऐसा कौन है जिसके साथ मैं तर्क करूं? नदिया में रहने वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित भी उसे कांप गए कि हम केशव कश्मीरी के साथ तर्क नहीं करेंगे, अगर तर्क करने लगे तो वह हमें लूट लेगा, हमें लेकर चला जाएगा। बड़े बड़े विद्वान तब बड़े बड़े विद्वानों ने सोचा कि हम उस निमाई बच्चे का नाम दे देते हैं, और ये बच्चे के साथ तो ये क्या तर्क करेगा, कुछ तर्क नहीं करेगा। तब बड़े बड़े विद्वानों ने कह दिया, हाँ यहां पर एक बहुत बड़ा विद्वान है जिसका नाम है निमाई, जो गंगा के तट पर एक स्कूल चलाता है व्याकरण सिखाने की। तब केशव कश्मीरी पूरी सेना के साथ निमाई की ओर आ रहा है। देखते कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, ज्योत्स्नावती रात्रि प्रभु शिष्य गण संगे वसिया छेन गंगा तीरे विद्यार प्रसंगे। प्रभु एक दिन रात को अपने छात्रों के साथ, अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के तट पर व्याकरण सिखाने के लिए बैठे थे। हेन काले दिग्विजयी ताहाई आईला गंगा रे वदन करी प्रभु रे मिलीला। उस वक्त वह दिग्विजय सार्वभौम केशव कश्मीरी उस गंगा के तट पर आया, और जैसे ही वह गंगा के तट पर आया, निमाई ने उस केशव कश्मीरी को प्रणाम किया। वसाइला तारे प्रभु आदर करिया दिग्विजयी कहे मने अवज्ञा करिया। निमाई ने तो केशव कश्मीरी को आदर दिया, लेकिन दिग्विजय सार्वभौम को तो अपने ज्ञान का अभिमान था, उसने निमाई का अनादर कर दिया शिष्यों के सामने। व्याकरण पढ़ाई निमाई पंडित तुम्हार नाम बाल्य शास्त्र लोके तुम्हार कहे गुणगाम। तुम व्याकरण पढ़ा रहे हो, मैंने सुना है तुम लोगों को व्याकरण पढ़ाते हो, और तुम्हारा नाम निमाई पंडित बन गए हो व्याकरण पढ़ाते पढ़ाते, मैंने ऐसा सुना है। व्याकरण मध्य जानी पढ़ाह कलाप सुनिलू फाकी ते तुमार शिष्यर सलाप। प्रभु कहे व्याकरण पढ़ाई अभिमान कारे शिष्य ते ना बुझे आमी बुझाई ते नारी। प्रभु कहे व्याकरण पढ़ाई अभिमान करी, व्याकरण पढ़ के बहुत ही अभिमान हो गया था। कहां तुम्ही सर्वशास्त्र कवित्व प्रवीण कहां आमी अभी शिशु पढ़ू या नवीन। उस दिग्विजय केशव कश्मीरी ने कहा कि तुम, मैंने सुना है तुम बड़े पंडित हो, मेरे साथ तर्क करो, मेरे साथ तर्क करो। तब निमाई ने कहा, तुम तो बहुत बड़े कवि हो, बहुत बड़े विद्वान प्रवीण हो तुम तो इस कार्य में, कहां तुम ही सर्वशास्त्र कवित्व प्रवीण, तुम तो सभी शास्त्रों के ज्ञाता प्रवीण हो, और कहां आमी शिशु और कहां मैं बालक निमाई पढ़ू या नवीन। मैं तो एक नया नया विद्यार्थी हूं, पढ़ुया का अर्थ विद्यार्थी होता है, मैं तो एक नवीन एक कल का विद्यार्थी हूं, और मैं आप इतने बड़े विद्वान के साथ कैसे तर्क कर सकता हूं। टीचर तोमार कवित्व किचू सुनीते हय मन कृपा करी कर यदि गंगार वर्णन। मुझ में ऐसी कोई योग्यता नहीं है, निमाई कहने लगे, मुझ में ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि मैं आपके सामने टिक सकूं, लेकिन अगर आप तो बहुत ही बड़े विद्वान पंडित हो, मैंने तो सुना है केशव कश्मीरी जो पूरे भारत को पूरी दुनिया को हरा कर यहां पर आया है, इसलिए कृपया करके अगर आप अपनी काव्य सुनाए तो हम इसका आस्वादन कर सकते हैं। कहा, क्या सुनना चाहते हो? तो निमाई ने कहा, हम गंगा के तट पर खड़े हैं, तुम इस गंगा के बारे में कुछ प्रार्थना कह दो। सुनिया ब्राह्मण गर्वे वणिते लागिला घटी एक शत श्लोक गंगार वणिला। जब कश्मीरी ने, केशव कश्मीरी ने यह सुना, तब यह एक शत का अर्थ होता है 100 श्लोक धड़ाधड़ जांजा वाद की तरह वह दिग्विजय केशव कश्मीरी गंगा जी की प्रार्थना करने लगा। जैसे ऐ ऊन रिल रुक ए ओं ए ओ ढाय वरट लण जम गण नमो जबय घड़ दशक, ऐसे जांजा वाद की तरह कोई एक शब्द भी जान न पाए इस ऐसे 100 श्लोक बोल दिया। कैसे प्रभु? आई उन रील रूक ए ओंग ए ओट हाय वरत लना जब गड़ दब जब ये गड़ दस जब गड़ जब कट तर कप चट तर चट तव कप ये शश सर हल. हम जब संस्कृत सीखने जाते थे मैं और नटना कर रहा हूं तो बस ये जो मैं बोला इससे इसमें सारा संस्कृत छिपा हुआ है. लेकिन ये कौन एक शब्द भी कोई मुझे बता सकता है इसमें से? मैं ये 14 शब्द बोला यहां पर दो बार नहीं, ऐसे जांजा वाद की तरह फटाफट धड़ाधड़ केशव कश्मीरी 100 श्लोक बोल दिए. सुनिया करिल प्रभु बहुत सत्कार, तोमा सम पृथ्वी ते कवि नाही यार. निमाय ने और सभी लोगों ने यह सुना तो निमाय ने कहा बहुत ही सुंदर आपने यह प्रार्थना की, और मैं तो कहता हूं तुम्हारे जैसा कवि इस पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता. तुम्हार कविता श्लोक बुझीते कार शक्ति, तुम्ही भाल जान अर्थ किवा सरस्वती. मुझे तो लगता है साक्षात सरस्वती तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है. एक श्लोक अर्थ यदि कर निज मुखे, सुनी सब लोक तबे पाइब बड़ सुखे. लेकिन तुम एक श्लोक का अगर हमें अर्थ करके सुनाओ तो मैं और सब लोग बहुत ही आनंद लेंगे. ये जो झांझावाद की तरह ये जो 100 श्लोक आप बोल दिए उसमें से एक श्लोक का तुम वर्णन अगर हमें करके दिखाओ तो हमें और भी आनंद आ सकता है. तब दिग्विजय व्याख्या श्लोक पूछिल, तब दिग्विजय केशव कश्मीरी ने कहा कौन सा श्लोक की व्याख्या तुम सुनना चाहते हो. तब चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया धड़ाधड़ ये श्लोक की व्याख्या सुनना मैं चाहता हूं. दिग्विजय चक्र में पड़ गया, शत श्लोक एक श्लोक प्रभु तो पढ़िल, वह 100 श्लोक में से एक श्लोक बीच का जो श्लोक था प्रभु ने पढ़ लिया. ए श्लोक अर्थ कर प्रभु यदि बेल, विस्मित हैया दिग्विजय प्रभु ए पूछिल. प्रभु ने कहा ए एक श्लोक जो मैं आपको बता रहा हूं इसकी व्याख्या कीजिए. लेकिन दिग्विजय पूरा विस्मित हो गया, चक्र में पड़ गया. जांझावत प्राय आम श्लोक पढ़ी, दिग्विजय कहने लगा मैंने जांझावाद की तरह श्लोक पढ़ा, जांझावाद की तरह मैंने 100 श्लोक बोल दिया. तार मध्य श्लोक तुम्ही केचे कंठे केल. लेकिन वो श्लोक 100 श्लोक में से वो एक श्लोक तुम्हें कंठ कैसे हो गया, कैसे याद रह गया? 14 शब्द में से आपको एक शब्द भी याद नहीं रहा, 100 श्लोक में से एक कंठ कैसे हो गया? प्रभु कहे, प्रभु कहते हैं, प्रभु कहे देवेर वेर तुमी कवि वर, एछे देवेर वेर कहो है श्रुतिधर. बहुत ही सुंदर प्रभु निमाय कहते हैं कि जिस प्रभु की कृपा से, जिस प्रभु की कृपा से तुम इतने बड़े दिग्विजयी कवि बने हो, जिस प्रभु की कृपा से तुम ऐसे 100 श्लोक बोल सकते हो, उसी प्रभु की कृपा से कोई श्रुतिधर भी बन सकता है, और उसी की कृपा से मैं यहां पर बोल रहा हूं. श्लोकेर अर्थ केल विप्र पाइला संतोष, प्रभु कहे कह श्लोकेर किबा गुण दोष. सारे ब्राह्मण श्लोक का अर्थ सुने अने और बहुत ही संतुष्ट हुए. विप्र कहे श्लोक नहीं दोषेर आभास, उपमा अलंकार गुण किछु अनुप्रास. केशव कश्मीरी कहने लगा देखिए कितनी सुंदर मैंने व्याख्या कर दी, इतने अलंकार इसमें भरे हुए, इतने गुण है, इतने उपमा अलंकार है, इतने अनुप्रास है, और इस मैंने जो व्याख्या की इस श्लोक में दोष की गलती की गंध भी नहीं है. अब चैतन्य महाप्रभु को मजबूर होना पड़ा क्योंकि बचपन में यही किए थे. प्रभु कहे न कही यदि ना करह रोष. निमाय ने कहा प्रभु मैं कुछ कहना चाहता हूं अगर आप मुझ पर गुस्सा ना करो तो. देखिए पूछने का ढंग तो देखी. प्रभु कहे न कही यदि ना करह रोष, अगर तुम मुझ पर रोष ना करो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं. कह तुम्हारा ए श्लोक कीबा आछे दोष. तो केशव कश्मीर ने कहा ठीक है मैं आपको रोष नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा. तो प्रभु ने कहा कह तुम्हार ए श्लोक कीबा आछे दोष. मैंने कहा तुमने इसका गुण का तो बहुत वर्णन किया, लेकिन तुम इसमें मुझे दोष दिखा सकते हो? प्रतिभार काव्य तुमार देवता संतोषे भाल मते विचारिले जानी गण दोषे। ताते ताते भाल करी श्लोक करह विचार कवि की कवि कहे ये कहिले सेही वेद सार। अब चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम इसका वर्णन करो, मुझे दोष दिखाओ। दिग्विजय ने कहा इसमें दोष हो ही नहीं सकता। निमाय ने कहा अगर तुम मुझ पर क्रोध न करो तो मैं इसका दोष कह सकता हूं। तब निमाय ने उस केशव कश्मीरी झांझावात की तरह श्लोक बोल चुका था, उसकी व्याख्या की और छाती खोलकर कहा था इसमें दोष का गंध भी नहीं है। निमाय ने उसमें पांच दोष दिखा दिए कि इसमें पांच भूल है आपकी। और जैसे ही ये पांच दोष दिखाए, दिग्विजय बहुत ही लज्जित हो गया, बेचारा पानी पानी हो गया। कौन सा है 48 87। सुनिया प्रभुर वाक्या दिग्विजय विस्मित, मुखे ना निसरे वाक्य प्रतिभा स्तंभित। सुनिया प्रभुर वाक्या, प्रभु ने जब दोष का वर्णन, निमाय ने जब दोष दिखाया कि तुम्हारे व्याख्या में यह दोष है, मुखे ना निसरे वाक्य, दिग्विजय के मुख से एक भी वाक्य नहीं निकल रहा था। और प्रतिभा स्तंभित, बिल्कुल एक पुतले की तरह स्तंभित होकर खड़े रह गए, आंख फाड़ कर, जैसे जगन्नाथ भगवान की आंख है कि इतना छोटा सा बच्चा पूरी दुनिया को हरा कर आया और हजारों लोग को बंदी बनाकर मैं यहां पर खड़ा हूं, और इतने हजारों लोगों के सामने एक छोटे से 10 साल के बालक ने दिग्विजय केशव कश्मीरी के व्याख्या में दोष दिखा दिया। बहुत ही शर्म की यह बात हुई। कहते चाहिए किचू ना आई से उत्तर, बहुत कहना चाहते थे, बोलना चाहते, लेकिन मुंह में से एक शब्द भी उत्तर भी नहीं निकल रहा था। तबे विचार ये मन हैया फाफर, तब उसका मन विचारने लगा, दिग्विजय का मन विचारने लगा। पढ़िया बालक केल मोर बुद्धि लोप, जानी सरस्वती मोरे करिया छिन कोप। वास्तव में ऐसे इतने छोटे बच्चे के सामने मुझ केशव कश्मीरी को हराना, वास्तव में यह सरस्वती का मुझ पर कोप है, सरस्वती मुझ पर दुखी है, इसलिए मैं हारा हुआ हूं। ये व्याख्या करीले से मनुष्य नहीं शक्ति, निमाय मुखे रही बले आपने सरस्वती। केशव कश्मीरी कह रहा है कि इसकी क्षमा कीजिए, निमाय ने कहा, निमाय तो अभी भी केशव कश्मीरी का प्रशंसा ही कर रहे थे। निमाय ने कहा यह व्याख्या करीले इस प्रकार से गंगा जी की 100 श्लोक में व्याख्या करना मनुष्य की बात नहीं है। वास्तव में है केशव कश्मीरी, तुम पर सरस्वती प्रसन्न है, इसलिए तुम इस प्रकार का कार्य कर रहे हो। एत भावी कहे सुन निमाय पंडित, तव व्याख्या सुनी आमी अहिला विस्मित। इहा सुनी महाप्रभु अति बड़ रगी, ताहार हृदय जानी करे करी भंगी। शास्त्र विचार भाल मंद नाही जानी, सरस्वती ये बलाई सेई बलिवाणी। केशव कश्मीरी ने कहा कि हे निमाय, इस प्रकार का ज्ञान आप में आया कैसे? तब निमाय ने कहा शास्त्र विचार भाल मंद नहीं जानी, शास्त्र में क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं कुछ नहीं जानता हूं। वास्तव में जो भक्त है वो यही कहते हैं, शास्त्र विचार भाल अच्छा और मंद बुरा आमी नहीं जानी, मैं कुछ नहीं जानता हूं। सरस्वती ये बलाय सही बलिवाणी, सरस्वती जो मुझे बुलाती है वह मैं बोलता हूं। इहा सुनी दिग्विजयी करील निश्चय, शिशु द्वारी देवी मोरे केल पराजय। दिग्विजय ने अब निश्चय कर लिया कि शिशु के द्वार पर ये हजारों लोगों के बीच में सरस्वती ने ही मुझे पराजित किया है, सरस्वती ने ही मेरी शक्ति वापस ले ली है। आज ही तारे नेवे दीप करी जप ध्यान, शिशु द्वारे केल मोरे एत अपमान। आज मैं जाऊंगा रात को, और रात को जाकर जप करूंगा, ध्यान करूंगा और सरस्वती को प्रसन्न करूंगा, और मैं उसे पूछूंगा कि इतने छोटे शिशु के द्वार पे, एक बालक के सामने मेरा इतना अपमान क्यों करवाया। वास्तव में केशव कश्मीरी के ऊपर सरस्वती का हाथ था। सरस्वती जी ने वरदान दिया था कि इस संसार में तू किसी भी जीव के साथ तर्क करेगा तो नहीं हारेगा। जो वरदान था सरस्वती के द्वारा, वस्तुतः सरस्वती अशुद्ध श्लोक कराइल विचार समय तारे बुद्धि आचल। और वस्तुतः फाइनल डिसीजन के सरस्वती ने ही मेरे श्लोक में दोष रख दिया है। तबे शिष्य गण सब हासिते लागिल तासबा निषेध प्रभु कविये कहिल। और यह सब देखकर, यह बात को देखकर चैतन्य महाप्रभु के जितने भी निमाय के शिष्य थे वो हंसने लगे। एक बालक के द्वारा इतने बड़े को हराना, सब हंसने लगे। लेकिन निमाय ने कहा नहीं नहीं, इस प्रकार से हंसना नहीं चाहिए। ताबा ते सबा निषेध प्रभु कावेर कहिल। तुम्ही बड़े पंडित महाकवि शिरोमणि यार मुखे बहिराय आछे काव्यवाणी। निमाय तो तब भी उसकी प्रशंसा ही करते थे केशव कश्मीरी की, कि तुम बड़े कवि हो, पंडित हो, तुम्हार कवित्व ये न गंगा जल धार। तुम्हारा कविता तो गंगा जी की धारा की तरह है, गंगा जी का धारा है। तोमा सब कवि कोथा नहीं देखे यार, मुझे तो तुम्हारे ऐसा कवि कहीं दिख ही नहीं रहा है। भव भूमि जय देव आर कालिदास, वाह वाह। भव भूति जय देव गोस्वामी कवि कवि कालिदास, तासाबार कवित्वे आच दोषेर। ये सब भी सबकी कविता में दोष हो सकता है, हालांकि ये बड़े बड़े कवि है, जयदेव गोस्वामी कवि कालिदास भवभूति। निमाय कह रहे कि भवभूति जयदेव आर कालिदास तासबार कवित्व, ये सब की कविता में दोष हो सकता है। लेकिन नहीं कह रहे कि ये सब की कविता में भी दोष हो सकता है, तो फिर आपकी कविता में एक दो दोष निकल जाए तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। दोष गुण विचार यही अल्प करिमानी कवित्व करणे शक्ति ताहा से वखानी। निमाय ने जो दोष का जो दोष था कविता में उसको दबा दिया और कविता का वखान प्रशंसा करने लगे। शेष्य व चापल्य किचु ना लबे आमार, शिष्यर समान मुई नाह तोमार। आजी वासा याह काली मिलीब आमार, सुनीब तुमार मुखे शास्त्र विचार। एई मते निज धरे गेल दुई जन, कवि रात्रे केल सरस्वती आराधन। निमाय ने कहा ठीक है, अब बहुत ही रात हो गई है, शाम का समय था, ठीक है। निमाय ने कहा आप बहुत ही सुंदर कवि हैं, आप बहुत सुंदर कविता कहते हैं और मुझे आपसे बहुत सुनना है, इसलिए अब तो रात हो गई है, अब हम घर चले जाते हैं, कल सुबह आकर हम मिलेंगे और कल सुबह मैं आपसे बहुत बहुत सुनना चाहता हूं। तब सुनील इतना कहे कि तुम्हार मुख्य शास्त्र विचार, यही मैं तो नीचे घरे गेल दुई जन, ये दोनों जन ये मत को लेकर घर पे चले गए और कवि रात्रे केल सरस्वती आराधन। लेकिन निमाय तो घर पे जाकर सो गए, लेकिन वह सार्वभौम दिग्विजयी केशव कश्मीरी, नींद कहां से आए बेचारे को, इतने हजारों लोगों को हरा कर चलता था, दिग्विजय बन गया था, लेकिन एक बच्चे के सामने हार जाना। पूरी रात जगा और सरस्वती की आराधना करने लगा। सरस्वती सपने तारे उपदेश केल, सरस्वती सपने में आई और उपदेश किया, साक्षात ईश्वर करी प्रभु के जानील। दिग्विजय केशव कश्मीरी ने कहा कि आज तक एक व्यक्ति के सामने मुझे किसी में हराने की ताकत नहीं है, लेकिन आज मुझे एक बच्चे के सामने आपने हरा दिया। मां सरस्वती ने कहा आज तुम जिस व्यक्ति से मिलकर आए हो यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, यह कोई साधारण बालक नहीं है। अरे जिस प्रभु की कृपा से, जिसके कारण मैं खुद ज्ञान लेती हूं और जगत के लोगों को वरदान देती हूं, प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती। मैं जो प्रार्थना करता हूं मंगलाचरण में कि जिस प्रभु ने सरस्वती को ज्ञान दिया और वह सरस्वती थोड़ा बहुत ज्ञान इस संसार के जीव पर कृपा करती रहती है। सरस्वती कहती है कि जिस प्रभु से मैं ज्ञान लेती हूं, जिससे मेरा जन्म हुआ है, वह प्रभु से तुम मिलकर आए हो और सबके सामने जब तुम तर्क करते तब तो मैं तुम्हें जिता देती, लेकिन जब तुम हमारे मेरे प्रभु के सामने खड़े थे और उसको हराने के लिए बैठे थे, मैं मेरे प्रभु के सामने कुछ नहीं बोल सकती। तो तुम भगवान को मिलकर, तुम प्रभु को मिलकर आए हो। प्राते आसी प्रभु पदे लैल शरण, तब केशव कश्मीर को पता चला कि यह तो साक्षात भगवान है और इसे तो कोई नहीं हरा सकता। और सुबह गए और जाकर तुरंत निमाई उस बच्चे के चरण में गिर गए। प्राते आसी आए सुबह को, प्रभु पदे लैल शरण, प्रभु कृपा केल तार खंडील बंधन। उस निमा 10 साल के निमाय के चरण में वह दिग्विजय केशव कश्मीरी गिर गया और कहने लगा कि मेरे भव बंधन को तोड़ दो कृपा करके। हरे कृष्णा हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे।
भाग्यवंत दिग्विजयी सफल जीवन, विद्या बले पायल महाप्रभुर चरण। कविराज गोस्वामी कहते हैं कितना बड़ा भाग्यशाली यह दिग्विजयी निकला कि अपने अभिमान के कारण भी चैतन्य महाप्रभु की निमाई की कृपा प्राप्त कर ली। और इस प्रकार से उस दिग्विजय केशव कश्मीरी ने निमाई के चरण पकड़े और उसी दिन से निमाई के ग्रुप में एक नई भर्ती हो गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का अवतरण और उनकी संक्षिप्त में लीला हम आज सुने। और भी कई सारे, हमने 10% लीला भी नहीं सुनी और 10% भी वर्णन नहीं किया। और भी अच्छे अच्छे वक्ता है, अगर वो बैठे होते तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपको समझाते, लेकिन हम बहुत ही कम अच्छी तरह से नहीं समझा पाए हैं। लेकिन जहां तक मैं आशा करता हूं आप सब बुद्धिमान हो और बुद्धिमान व्यक्ति बच्चे की तोतली बोली को समझ लेता है और तोतली बोली को सुनकर खुश होते हैं, तो मैं वही आशा रखकर कि मेरी तोतली बोली सुनकर आप प्रसन्न होंगे। और यह बात आपको, यह जो मैं आपको कहा इसमें 10% भी समझ आ गया फिर भी आपका जीवन धन्य है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण साक्षात चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में आए, उन्होंने इस प्रकार से जन्म लिया, जन्म लीला, और 5 से 10 साल तक की आगे भी लीला बाकी है लेकिन अब फिर कभी लेंगे, बंद ही करना है उन्होंने। अब इसके बाद काजी का उद्धार करते हैं और काजी का उद्धार करने के बाद श्रीमन महाप्रभु सन्यास लेते हैं और सन्यास लीला मध्य लीला में दी गई है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीला है। इस लीला का अगर कोई श्रद्धा से श्रवण करता है तो वास्तव में उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, वास्तव में वह अमृत बन सकता है जिसके जीवन में कभी मृत्यु नहीं आ सकती। तो हम सबको चाहिए कि इस प्रकार की लीला का श्रवण प्रतिदिन करना चाहिए, और प्रतिदिन न कर सके तो इस्कॉन के द्वारा वीक में एक बार एक जगह पर प्रोग्राम होता है, तो आप सबको आना चाहिए और यह श्रवण करके यह भव रोग से मुक्त होकर भगवान के धाम में हम जा सकते हैं। और यह कार्यक्रम इसलिए रखा गया कि आने वाले मंगलवार को ही चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिन है, इसके उपलक्ष पर यह कार्यक्रम रखा गया है। और तो इस कार्यक्रम में सब लोग भाग लीजिए। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होगा श्री राधा गिरधारी मंदिर में, मंगलवार को आइए। इस प्रकार की कथा सुननी है तो मंगलवार को पूरा दिन मंदिर में यह कथा होगी और शाम को चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक होगा, इसमें आप सब लाभ लीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हमारे मुख से कोई गलत शब्द निकल गए हो, कठोर शब्द निकल गए हो तो आपका दास समझकर क्षमा करना। और भी बहुत बड़ा अपराध हो चुका है दो प्रभु का नटनागर प्रभु और धीमन प्रभु। आज इस प्रोग्राम में तीन वक्ता थे लेकिन बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे पहले रखकर लेकिन हमारी आदत है बोलने की, और जब शुरू करते हैं तब बंद नहीं होते हैं, तो इसके लिए कुछ बोलने का अवसर नहीं मिला। लेकिन फिर भी अगर आपकी आज्ञा हो, आपकी इच्छा हो, तो हाँ, दोनों प्रभु, पहले नटनागर प्रभु, बाद में धीमन प्रभु, 10-10 मिनट यहाँ पर बोले, ताकि हमारा मान रह जाए, एक संकल्प है हमारा, तो प्लीज आकर बोलिए 10-10 मिनट। तो इस प्रकार का प्रोग्राम, अब जहां से लीला बाकी है यह लीला हम इसी यहीं से कंटिन्यू करेंगे, वार और तारीख आपको बता देंगे। हरे कृष्णा, आइए।
सबसे ज्यादा दयालु अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु का, और उसी की कथा श्रवण करने से, उसका नाम लेने से अपने आप दया आ जाती है। भगवान का वो गुण है दया, भगवान का एक नाम है दयालु, अपने आप दया आती है भगवान में से। भगवान की एक शक्ति है जो काम कर रही है, दया देती है। हम सब ने 2-3 घंटे तक सुना चैतन्य महाप्रभु की प्रवाह में, हेली में उसकी कथा का श्रवण किया, तो हम सब बड़े भाग्यवान जीव हैं कि उसी कथा में बैठना, श्रवण करना परम सौभाग्य की बात है। इस समस्त जगत में, ब्रह्मांड में बहुत कम भक्तों को, जीवों को ये ज्ञान प्राप्त होता है। उसी चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी की बात नहीं की जाती है, ब्रह्मांड की बात कही जाती है कि भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव। इस भ्रमण संसार चक्र के अंदर जो भ्रमण करता है उसमें कौन सा ऐसा भाग्यवान जीव है। गुरु और कृष्ण की कृपा प्रसाद पाए, भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की कृपा से किसी किसी व्यक्ति को भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। और हम सब भक्तों को, खास करके आप सब भक्तों को हुआ है तो भक्ति लता बीज प्राप्त हो तो हुआ है, लेकिन उसको श्रवण की हरिनाम जप से उसको बढ़ाना चाहिए। और इसी बढ़ेगा तब जब हम वैष्णव के संग में रहेंगे, तो उसी वैष्णव का संग हमें देते हैं प्रभु जी लाल गोविंद प्रभु। तो उसका एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य जनाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप सदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललित। श्री श्रीमती राधा रानी के भाव लेकर ये धड़धम पर आविर्भूत हुए थे करीब 520-25 साल पहले। पश्चिम बंगाल का एक नदिया नाम के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे नवद्वीप, गंगा के तट पर नवद्वीप है, उसमें जो मध्यद्वीप जिसका अभी का जो नाम है मायापुर, वहाँ पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आविर्भूत हुए थे। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्न। जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है वो भगवान स्वयं कृष्ण और श्रीमती राधा रानी स्वयं, तो ये जो चैतन्य महाप्रभु है उनको महाबदन्नाय अवतार बोलते हैं। तो उस पर एक भजन है, क्योंकि हम कथा को विस्तारित नहीं करना चाहते इसलिए, क्योंकि ये ऑर्डर ऐसा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ का आयोजक सब वरिष्ठ भक्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और खास करके लाल गोविंद प्रभु सब उपस्थित प्रभु जी सब वरिष्ठ माता जी सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप कृपा करके यहाँ पर मेरे को बैठे हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है उसमें श्री कृष्णदास गुरुराज कृष्ण ने श्री चैतन्य चरितमृत में वर्णन किए, और वास्तव का जो अवतार है जिनका नाम है वृंदावन दास ठाकुर, उन्होंने श्री चैतन्य भागवत के रूप में वर्णन किए। एक्चुअली चैतन्य भागवत का पहले का नाम था चैतन्य मंडल, तो बाद में जो नरहरि सरकार चैतन्य महाप्रभु के लीला का पार्षद थे, उन्होंने उनका जो शिष्य है लक्ष्मीदास ठाकुर उन्होंने चैतन्य मंडल लिखा। उसके बाद जो भक्तों ने मिलकर एक ये किया, तय किया कि अभी दो दो तो चैतन्य मंडल नहीं रह सकते, तो एक चैतन्य भागवत बन गया जो भीमदास ठाकुर ने लिखा था, और लोचनदास ठाकुर का जो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लिखे धन्यवाद का जो लीला है उसमें उनका नाम है चैतन्य मंगल। तो इन सबसे हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत कुछ हम जान सकते हैं, तो ये बहुत कम समय में तय हो नहीं सकते, तो हम थोड़ा सा भजन लेते हैं, एक छोटा सा भजन, छोटा भी नहीं बहुत बड़ा है। भगवान का भजन कोई छोटा नहीं होता है। Oh,
Krishna, Hare Krishna.